हरे कृष्णा। आज शायद आखिरी क्लास होगा, प्रयास करेंगे तीन अध्यायों को समाप्त करने के लिए। वैसे ये अध्याय हैं थोड़े मुश्किल समझने के लिए, फिर भी जहां तक हो सके इनको बहुत ही सरल बनाने का प्रयास किया है। इतनी गहराई में नहीं जाएंगे जितनी गहराई में जाना बिल्कुल आवश्यक है समझ के लिए, उतना हम जाएंगे। तो हम 17वें अध्याय में पहुंचे हैं, भाव भक्ति। पिछली बार रागानुग भक्ति की चर्चा समाप्त हुई थी और इस बार से भाव भक्ति। आप तो जानते हैं कि उत्तम भक्ति के वर्गों में सर्वप्रथम है साधन भक्ति, जिसके दो अंग हैं वैधि भक्ति और रागानुग भक्ति, और उसके बाद है साध्य भक्ति। साध्य भक्ति के दो भाग हैं, एक है भाव भक्ति और दूसरा प्रेम भक्ति। तो भाव भक्ति ये साध्य भक्ति के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति भाव भक्ति के स्तर में है, जो भक्त भाव भक्ति के स्तर में है, वो साधक नहीं कहलाता है। केवल जो वैधि और रागानुग का साधन भक्ति करते हैं वो साधक कहलाते हैं। अब भाव भक्ति ये सिद्धि की अवस्था है। आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि एक अनंत वस्तु है, अनंत चीज है। सिद्धि की कोई सीमा नहीं है, सिद्धि का कोई अंत नहीं है। इसलिए ये कहना शुरू होगा कि एक दृष्टि से सिद्धि का शुभारंभ है, प्रारंभ है, क्योंकि भाव आगे बढ़ के प्रेम बनेगा, प्रेम भक्ति। तो आइए अभी हम देखते हैं कि भाव भक्ति की परिभाषा क्या है। अच्छा, वो श्लोक लगाएंगे, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। तो सर्वप्रथम अभी भाव भक्ति की परिभाषा हम जानेंगे। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचि होना चाहिए। हाँ, रुचि भेश चित्त मासृण्य। कृद स्वभाव उच्यते, वो रुचि भी कर दीजिए। हाँ, रुचु नहीं, रुचि भी। अच्छा, तो पढ़िएगा पहला पैराग्राफ, फिर इसके बाद में हम इस श्लोक की व्याख्या करेंगे। कोई पढ़ेंगे?
वैधि भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह लोकों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय में भाव में प्रेम का विस्तार होता है, जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय हो जाता है, तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भावमय प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक होता है। इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी पद को अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति से आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता और वह राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखलाता है।
नहीं बस तो भाव भक्ति की पहचान प्रभुपाद जी ने यहां करा दी है कि भाव भक्ति की अवस्था में व्यक्ति दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है, तीन गुणों के परे हो जाता है, और यहां आइए इस श्लोक का शब्द भेद करते हैं। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, ये भाव भक्ति का स्वरूप लक्षण है। आपको याद होगा जब हम अन्याभिलाषिता शून्यम इस श्लोक की चर्चा कर रहे थे तो उस समय भी हम स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण की चर्चा कर रहे थे। इसी प्रकार से भाव भक्ति का स्वरूप लक्षण या मुख्य लक्षण है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। तो ये क्या है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा? सत्व क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। परंतु यहां पे केवल सत्व नहीं है, शुद्ध सत्व है। तो शुद्ध सत्व क्या है? तीनों गुणों से ऊपर। तो ये आध्यात्मिक स्थिति है, ये भगवान की स्वरूप शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति। अच्छा, ये भी कोई कृपया लगाएंगे। ऐसे जगह छोड़ दीजिए, अभी चार पांच लगाने हैं इसे। तो ये लिख लीजिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे। भगवान की शक्तियों के बारे में हम चर्चा तो कर ही चुके हैं पहले भी, कि भगवान की मुख्यतः दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक है बहिरंगा शक्ति, जो कि ये माया शक्ति है, तीन गुणों वाली, भौतिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और इसके अलावा भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जिसे चिन्मय शक्ति भी कहते हैं, या इसे भगवान की स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। अंतरंगा शक्ति ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, और इस आध्यात्मिक शक्ति या स्वरूप शक्ति या चित शक्ति या अंतरंगा शक्ति के तीन भाग हैं, संधिनी, संवित और हलादिनी। ये तो आप जानते हैं सब, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं भाव भक्ति का स्वरूप लक्षण या मुख्य लक्षण है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। तो इन तीन चार शब्दों की परिभाषा के ऊपर व्याख्या भी हम करेंगे। तो ये सत्व जो है ये केवल साधारण भौतिक सत्व नहीं है, भौतिक सत्व गुण नहीं है, ये शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व का अर्थ है भगवान की अंतरंगा शक्ति या उनकी स्वरूप शक्ति। अभिभक्त तीन गुणों से परे हो चुका है, त्रिगुणातीत हो चुका है। और जब ये अंतरंगा शक्ति भक्त के हृदय में प्रवेश करती है तो उस अवस्था को भाव भक्ति कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, जब भगवान के स्वरूप शक्ति का प्रवेश हृदय में होता है भक्त के, तो उस समय व्यक्ति भाव भक्ति के स्तर में स्थित हो जाता है। तो यहां जब भगवान की स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति भक्त के हृदय में प्रवेश करती है तब वो भाव भक्ति के स्तर पर स्थित हो जाता है। ठीक है। अभी शुद्ध सत्व का अर्थ है संवित। यहां पर इस संदर्भ में संवित शक्ति अंतरंगा शक्ति का अंग है, ये संवित शक्ति। संक्षेप में ये बताइए, संधिनी क्या है, संवित क्या है, लादिनी क्या है, इन तीनों के कार्य क्या हैं? कोई बताएंगे संधिनी का कार्य क्या है? किसी को याद है? सत चित आनंद। तो सत मतलब क्या है? सत चित आनंद। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है ना, तो इसमें इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? तो भगवान सत है मतलब शाश्वत है, सत्य है, क्योंकि जो शाश्वत है वही सत्य है। तो भगवान शाश्वत है और उनके शाश्वतता को बनाए रखने के लिए उनकी संधिनी शक्ति है, उनके अस्तित्व। वैसे ये तो भगवान की शक्ति है, भगवान तो शक्तिमान है, शक्तियों को हमेशा वश में रखते हैं। संवित शक्ति क्या है? चित से संबंधित है। सत जैसे सत संधिनी से संबंधित है, वैसे चित संवित से संबंधित है। चित शक्ति क्या है? ज्ञान। जिसके द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा भगवान अपने आप को जानते हैं और जिसके द्वारा जीव भी भगवान को जान सकता है। और फिर आनंद, आनंद क्या है? लादिनी शक्ति, लादिनी शक्ति का प्राकट्य है। तो यहां जब शुद्ध सत्व कहा जाता है तो विशेष करके संवित शक्ति का उल्लेख होता है। इसका मतलब है कि भक्त अभी भगवान को जान सकता है और अपना भी संबंध भगवान के साथ जान सकता है। परंतु यहां केवल शुद्ध सत्व इतना ही नहीं कहा है, और एक शब्द आता है विशेष। विशेष मतलब उत्कृष्ट। तो जो अंतरंगा शक्ति का उत्कृष्ट भाग है वो क्या है? संधिनी, संबित और लादिनी में से उत्कृष्ट कौन सा है? लादिनी शक्ति। तो जब विशेष शब्द कहा जाता है यहां पर शुद्ध सत्व विशेष, तो ये लादिनी को सूचित करता है। अर्थात शुद्ध सत्व विशेष का मतलब है संवित शक्ति और लादिनी शक्ति दोनों मिलकर भक्त के हृदय में प्रवेश करती हैं। संवित और लादिनी, संवित से भक्त भगवान को जान लेता है और लादिनी से, लादिनी शक्ति के द्वारा वो भगवान को प्रेम कर सकता है और दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकता है। तो ये दिव्य शक्ति है जो भौतिक जगत में कार्य करती है उन भक्तों के कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए, जो इस अवस्था को, इस स्तर को पहुंच को प्राप्त कर चुके हैं। जो जो इस योग्य हैं ऐसे भक्तों के हृदय में वो प्रवेश करके कृष्ण प्रेम को जागृत करती हैं, ये इनका कार्य है। तो ये शुद्ध सत्व विशेष की बात जो हो रही है ये भौतिक सत्वगुण नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं भगवान की, संवित और लादिनी। और आत्मा, ये शब्द का अर्थ है सार। तो भाव भक्ति वो भक्ति है या वो स्तर है जिसका सार है लादिनी और संवित शक्ति। भाव भक्ति वो है जिसका सार कृष्ण की स्वरूप शक्ति है लादिनी और संवित के रूप में। और जब ये लादिनी और संवित शक्ति भक्त के हृदय में प्रवेश करती हैं, तो भक्त के मन में एक अतीव तीव्र इच्छा पैदा करती हैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए। तो भक्त की एकमात्र इच्छा रह जाती है कि कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाए। और जब ये स्वरूप शक्ति अर्थात लादनी और संवित जब प्रवेश करती हैं तो भगवत प्रेम को उदित करती हैं। या कराती हैं। भाव भक्ति को प्रेमांकुर भी कहा गया है, प्रेम का अंकुर। एक साधारण अंकुर से क्या निकलता है? कली। अंकुर को कली है ना, कली, कली कहते हैं ना अंकुर को। अंकुर आप सब जानते हैं ना। अंकुर से क्या आता है बाहर? फूल आता है ना, फूल। तो उसके पहले अंकुर होता है, जब वो खिलने के पहले बंद होता है, फिर धीरे से खुल जाता है, वो आगे चल के जब परिपक्व हो जाता है फिर खिलता है। उसके पहले तो अंकुर के रूप में ही रहता है। तो भाव जो है, भाव भक्ति, ये प्रेम भक्ति से के से पहले जो स्तर है वो है, प्रेम भक्ति की तैयारी है ये, प्रेम भक्ति का प्राथमिक स्थान स्तर है। जैसे एक बीज को जब बोया जाता है जमीन में तो सूरज के प्रकाश और उष्णता की आवश्यकता भी होती है, जिससे कि उस बीज का पोषण होता है और फिर वो अंकुर बन जाता है, फिर वो खिल जाता है, फिर आगे पौधा हो जाता है आदि और बहुत कुछ हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस ये जो प्रेम का बीज है, जो भाव है, उसको अगर विकसित होना है तो सूर्य रूपी स्वरूप शक्ति को आना है भक्त के हृदय में। तो जब ये स्वरूप शक्ति प्रवेश करती है तो इस बीज का पोषण करती है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे सूर्य बीज को या अंकुर को का पोषण करता है, उसी प्रकार से यह स्वरूप शक्ति अर्थात लादनी और संवित भक्त के हृदय में प्रवेश करके उस भगवत प्रेम का पोषण करते हैं। और यहां देखिए बाद में कहा गया है, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, प्रेम रूपी सूर्य का अंशु है। अंशु मतलब किरण। तो अगर कृष्ण प्रेम सूर्य है तो भाव भक्ति क्या है? सूर्य का किरण है। किरण में और सूर्य में अंतर है? है भी और नहीं भी। एक दृष्टि से दोनों एक ही हैं गुण में, परंतु सूरज में कितने सारे किरण हैं और एक किरण तो केवल एक ही है। गुण में एकता है, फिर भी किरण किरण है और सूर्य अपनी जगह में सूर्य ही है। किरण तो सूर्य का अंश मात्र है, सूरज की झलक मात्र जब अरुणोदय के समय थोड़ी किरणें दिखाई पड़ती हैं, और जब किरणें आती हैं तो हमें पता चलता है कि अभी सूरज उदित होने वाला है और दिवस की शुरुआत होनी है, निश्चित है, होना ही है ये। ठीक उसी प्रकार से जब भाव का अंकुर प्रकट हो जाता है तो हमें निश्चित रूप से जानना चाहिए कि प्रेम भक्ति थोड़े ही समय में प्रकट होने वाली है। भाव भक्ति जो है केवल प्रेम भक्ति की तैयारी है बस। जिस प्रकार से सूर्योदय वो दिवस की तैयारी है बस। तो भाव भक्ति की अवस्था से कृष्ण प्रेम की जागृति आरंभ होती है, क्योंकि यह साध्य अवस्था है ना, तो यहीं से कृष्ण प्रेम की जागृति वास्तव में होती है। इसके पहले क्या था? साधन अवस्था था। हालांकि भक्त को रुचि है, आसक्ति है, परंतु अब इसे आगे बढ़ के वो भाव की अवस्था में आ गया, वास्तव में भी कृष्ण प्रेम का जागरण हो गया है। तो ये है भाव भक्ति, जिसका मुख्य लक्षण या स्वरूप लक्षण है कि उसका सार ही या उसकी आत्मा ही भगवान की स्वरूप शक्ति है, लादनी और समृद्ध, ठीक है ना। और ये कृष्ण प्रेम का अंकुर है या प्रेम रूपी सूर्य का एक किरण है। साम्य भाग मतलब इसके समान, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। फिर बाद में और तटस्थ लक्षण भी हैं। तो पहला तटस्थ लक्षण है चित्त मासृण्य कृत। पहला है रुचि भी ही चित्त मासृण्य, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं यहां पर रुचि भी ही, ये और एक तटस्थ लक्षण है। तो दो तटस्थ लक्षण हो गए, एक चित्त मासृण्य और दूसरा रुचि भी ही। तो चित्त मासृण्य का मतलब है कि हृदय कोमल हो जाता है। हम पढ़ चुके हैं ना भक्ति के लक्षणों में, कभी बात हो रही थी, किस संदर्भ में बात हो रही थी हृदय को कोमल बनाने के लिए? भक्ति हृदय को क्या करती है? कोमल बनाती है। और विशेष करके जब भाव भक्ति को पहुंच जाता है भक्त, तब वास्तव में उसका हृदय कोमल होने लगता है, हो जाता है बल्कि। चित्त मासृण्य कृत, तो भाव भक्ति हृदय को कोमल बनाती है। और फिर इसके बाद जो भक्ति के भाव हैं, वो बहुत सहज ही भक्त के हृदय को विचलित कर सकती हैं ऐसे कोमल अवस्था में। ये तटस्थ लक्षण है भाव का, भाव भक्ति का। और दूसरा तटस्थ लक्षण है रुचि भी ही, तरह तरह की इच्छाएं, तरह तरह के स्वाद भगवान की सेवा के लिए मन में उभर आती हैं भक्त के लिए। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा, भगवान को अनुकूल भाव से सेवा करने की इच्छा, हृदय में भगवान से बहुत निकट होने की इच्छा, ऐसी इच्छाएं भक्त के हृदय में बहुत तीव्र हो जाती हैं, और ऐसे स्वाद, ये स्वाद लगता है।
स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्याय में भक्ति के लक्षणों के साथ ही कभी निर्देश भी बतलाए गए हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं और रागानुगा प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उड़ सकते। इस तरह वैधि भक्ति तथा रागानुगा भक्ति भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई है। वैधि भक्ति के भी दो विभाग होते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर फिर से वैधि भक्ति को काट दीजिए, वो शब्द वो ठीक नहीं है। अभी जो आपने पढ़ा वो फिर से पढ़िए, आप ध्यान दीजिएगा, आपकी किताबों में देखिए जरा। नहीं, अभी जो एक वाक्य पढ़ा, वैधी भक्ति,
इस तरह वैधी भक्ति तथा रागानुगा भक्ति भक्ति के दोनों प्रकारों की व्याख्या की गई। वैधी भक्ति के दो विभाग होते हैं।
पढ़ आगे।
प्रभावात्मक सिद्धि अंश तथा कार्यकारी साधन अंश। प्रभावात्मक सिद्धि अंश भाव कहलाता है। इस तरह संबंध में तंत्रों में एक
नहीं, वो फिर से पढ़िए वही वाक्य।
भक्ति के इन दो प्रकारों
नहीं, वही एक वाक्य। वैधी भक्ति
के भी दो विभाग होते हैं। प्रभावात्मक सिद्धि अंश तथा कार्यकारी साधन अंश।
तो ये क्यों वैधि भक्ति नहीं हो सकता है, बोलिए। हाँ, ये वैधि भक्ति की बात करके फिर वो सिद्ध अवस्था की बात कर रहे, कैसे हो सकता है? तो ये ट्रांसलेशन में गलती है। ये और एक प्रकार की बात है जिसको, ठीक है, ये लगाइएगा ऊपर चार्ट जरा, ये यहाँ पर लगाइए। वास्तव में ये वैधि भक्ति के बाद फिर रागानुगा भक्ति, और दोनों साधन भक्ति हैं, फिर ये सिद्ध अवस्था की बात कैसे हो सकती है? तो ये वैधि भक्ति नहीं हो सकती। तो ये बात हो रही है, इसे कहते हैं चेष्टा रूप भक्ति। तो उत्तम भक्ति के और एक दृष्टिकोण से भी विभाजन किया जा सकता है, चेष्टा रूप भक्ति और भाव रूप भक्ति। चेष्टारूप भक्ति वो भक्ति है जो कार्यों से किया जाता है, अपनी चेष्टा से। चेष्टा मतलब प्रयास, हमारे कार्य, चाहे वो शरीर से किए जा रहे हों, अपने वाणी से या अपने मन से, इसे चेष्टारूप भक्ति कहते हैं। और दूसरा है भाव रूप भक्ति, जो कि भाव भक्ति से आगे ही होता है। तो साधन भक्ति की अवस्था में नहीं होता वो। तो चेष्टा रूप भक्ति या जो कार्यों से भक्ति करना, उसके भी दो भाग हैं। एक तो साधन, जिसको साधन रूप भक्ति कहते हैं, और दूसरा है साध्य, जिसे कार्य रूप भक्ति कहते हैं। तो विशेष करके साधन रूप भक्ति की चर्चा हम कर चुके हैं। हुँ? अब जो भाव भक्ति ये तो साध्य अवस्था है, तो भाव भक्ति में पहुंचकर जो हम कार्य करते हैं हमारे शरीर से, वाणी से, मन से, उसे कार्य रूप भक्ति कहते हैं। अच्छा, तो वैधि भक्ति का वाक्य फिर से पढ़िएगा कि वैधि भक्ति यहां जो लिखा हुआ है।
वैधि भक्ति के दो विभाग होते हैं।
अभी उस वैधि भक्ति को काटिए और उसके जगह में आप चेष्टा रूप भक्ति लिख लीजिए।
चेष्टा रूप भक्ति के दो विभाग
अपने किताबों में आप वो कर दीजिए, अभी लिख दीजिए, नहीं तो बाद में आप सोचेंगे अरे ये कैसे हुआ, ये वैदिक भक्ति में कैसे ये सिद्ध अवस्था आ गई। हाँ आगे पढ़िएगा।
चेष्टा रूप भक्ति में दो भाव होते हैं, भावक प्रभावात्मक प्रभावात्मक सिद्धि अंश तथा कार्य कार्य साधन अंश। प्रभावात्मक,
अच्छा तो जो सिद्धि है, सिद्धि के वो क्या है, वो ये है साध्य कार्य रूप भक्ति, और जो साधन है वो यहाँ साधन रूप भक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आप समझ रहे हैं। यहाँ जो प्रभुपाद जी कह रहे, ये ट्रांसलेशन में क्या है थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। सिद्धि अंश, जो सिद्धि है, सिद्ध अवस्था है, इसके आगे स्पष्ट होगा। आप पढ़िए आगे और पढ़िए।
प्रभावात्मक सिद्धि अंश भाव कहलाता
है।
इस संबंध
तो
में
प्रभावात्मक जो है वो सिद्ध अवस्था है ना, और उसे भाव कहते हैं। तो ये है प्रभावात्मक जो सिद्ध अवस्था है वो कार्य रूप भक्ति साध्य। और दूसरा यहाँ जो कहा गया कार्यकारी या साधन, वो ये है साधन रूपी। ठीक है, हाँ आगे पढ़िएगा।
इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है। यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते।
हाँ तो एक मिनट, तो ये है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, क्योंकि अभी हलादिनी शक्ति का प्रभाव शुरू हो गया है, तो इस प्रकार से ये दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं कि ये हर समय नहीं होते, कभी कभी आते हैं। पढ़िएगा फिर से।
इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है।
कभी कभी, एक आध बार कभी कभी आ जाता है। हाँ पढ़िए।
यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते, किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं। जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया था, तो वह भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन विकार विकसित हुए और उनके नेत्रों में अश्रु झरने लगे। ये लक्षण भाव के कार्य हैं। ये शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। ये भाव लक्षण ब्राह्मण
अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। तो यह अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया हुआ है भाव भक्ति के लिए, कैसे महाराज अम्बरीश भाव भक्ति की अवस्था में स्थित थे। ठीक है, अच्छा यहाँ जो हम साधन रूप भक्ति की बात कर रहे हैं और आगे साध्य, तो पहले भी हम देख चुके हैं कि साधन रूपी भक्ति वो है जो आगे चल के भाव को पैदा करती है। है ना, क्योंकि साधन का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य भाव को, तो ये याद रखिएगा जरा। तो यहां पर फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब भाव का प्राकट्य होता है मन में, हृदय में, फिर वो भाव वहीं पर रह जाता है, और हालांकि उसके लक्षण जो है, बाहरी लक्षण आते हैं और जाते हैं, लेकिन वो भाव मन में रह जाता है, और जब वे चिरकाल तक रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। इस अवस्था में जो भाव है वो भक्त के चेतना में समा जाता है, भक्त भावमयी हो जाता है बिल्कुल, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं जानता, वो केवल कृष्ण के बारे में सोचता है, कैसे कृष्ण को प्रसन्न करना, कैसे कृष्ण की सेवा करना, और यहां तक वो भावमयी हो जाता है कि हालांकि भाव उसके मन में प्रकट हुआ है, लेकिन वो भाव अभी उसके मन से अभिन्न हो जाता है। तो भाव जो है वो कार्य और कारण दोनों बन जाता है। जैसे एक लोहे के टुकड़े को अगर आप अग्नि में डालेंगे तो फिर धीरे 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 से क्या होता है, अग्नि के गुण आ जाते हैं, और यहां तक बात हो जाती है कि एक एक अवस्था ऐसी आएगी जब अग्नि और लोहे में कोई अंतर आपको पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से भक्त इतना भावमयी हो जाता है कि उसके चित्त में और भाव में कोई अंतर नहीं रह जाता। ठीक है, तो अब ये प्रश्न आता है कि ये भाव भक्ति की अवस्था को, या अब हम समझ चुके हैं कि भाव भक्ति क्या है और विशेष करके इसके लक्षण क्या हैं, अभी हम जानना चाहेंगे कि भाव भक्ति कैसे प्रकट होती है किसी भक्त के हृदय में, किस तरह से। एक चार्ट है इसमें लगाएंगे, ये नहीं, भाव भक्ति के दो कारण, प्रकट होने के दो कारण, ये नहीं, इसके बाद नहीं, नहीं आगे, हाँ ये, हाँ इसके ऊपर लगा दीजिए। भाव भक्ति के प्राकट्य के दो कारण, भाव भक्ति कैसे प्रकट होती है हृदय में, एक है साधन के द्वारा, दूसरा है कृपा के द्वारा। तो जो भक्त साधन से भाव भक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं उनको साधन सिद्ध कहा गया है। आपने सुना है शब्द साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध, तो यह उनकी बात हो रही है। जो लोग साधन के द्वारा भाव भक्ति को पहुंचते हैं, को प्राप्त करते हैं, उनको साधन सिद्ध कहा जाता है। और जो लोग, जो भक्त भगवान या भगवान के भक्त की कृपा द्वारा भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं उनको कृपा सिद्ध कहते हैं। अच्छा, अब लिख लीजिए, फिर बाद में हम चर्चा करेंगे। कृपा सिद्ध, कृपा सिद्ध, और पहले है साधन सिद्ध, जो साधन करके, साधना करके जो भाव की अवस्था को प्राप्त होते हैं। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति है ना, जो तो साधन भक्ति करके भाव को प्राप्त होते हैं वो है साधन सिद्ध। जैसे जो बीए करके, एमए करके फिर पीएचडी कर लेता है उसे साधन सिद्ध कहते हैं। लेकिन जिसे डायरेक्ट जो विश्वविद्यालय पीएचडी दे देती है पुरस्कार के रूप में क्योंकि वो बड़ा आदमी है, वो है कृपा सिद्ध। उसे बीए एमए किए बिना ही पीएचडी मिल जाता है। हाँ? समझ गए ना आप सब। तो कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध, अच्छा 134, 135, 136, ये जो तीन पेज है ना, इन तीन पन्नों का सार यहाँ इस चार्ट में है। तो इस चार्ट को आप जान जाएंगे तो तीन पन्नों का सार आप जान गए, ठीक है। इसलिए इस चार्ट को लिख लीजिए, फिर संक्षेप में इसका वर्णन हम करेंगे। आपके स्टडी में, अभ्यास में ये बहुत काम आएगा। ऐसे आप प्रयास कीजिए, जब भी आप किताब पढ़ते हैं ना, तो उस समय उसका सार निकालने के लिए आप कोशिश कीजिए। अब ये तीन पन्ने में पढ़ लिए तो ये चार्ट निकाल लिया। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जब भी आप पढ़ेंगे कोई भी ग्रंथ पढ़ें उसका सार आपको निकालना है। हम समझाएंगे हर एक बात को, हम समझाएंगे। इस समय केवल आप लिख लीजिए, फिर हम बोलना शुरू करेंगे, फिर आप लिखिए मत। उस समय आप चार्ट में लिखिए मत। बात आएंगे आएंगे आएंगे, अभी केवल लिख लीजिए, सबकी व्याख्या करेंगे हम। तो आपने लिख लिया सर। अच्छा, तो साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। साधारणतः जो साधन सिद्ध हो, जो सिद्ध होते हैं वो साधन सिद्ध ही होते हैं। प्राय जितने भी सिद्ध भक्त होते हैं, जो भाव भक्ति को प्राप्त कर चुके होते हैं, वो साधन सिद्ध ही होते हैं। कृपा सिद्धों की जो संख्या है वो कम है। दुर्लभ है बहुत, परंतु हैं, कई उदाहरण हैं ऐसे। परंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें साधन करने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करेंगे, और जब भगवान की कृपा आएगी हम भाव को प्राप्त करेंगे, प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें साधन करते रहना है। तो साधारणतः साधन भक्ति करके ही भक्तों ने भाव भक्ति को प्राप्त कर लिया है, और भाव भक्ति से फिर प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लिया है। तो साधन भक्ति के दो स्तर हैं, आपको पता है। एक क्या है, वैधि साधन, और दूसरा रागानुग साधन। तो जो वैधि साधन करके सीधे भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं वो भी एक अवस्था है। ऐसे भी उदाहरण है, जैसे यहां नारद मुनि के बारे में बताया हुआ है। आप समझ रहे हैं बात। वैधि है, रागानुग है, भाव है और प्रेम है ना। तो कभी कभी भक्त जो होते हैं वैधि भक्ति इतनी अच्छी तरह से कर लेते हैं कि सीधे उनको भाव प्रकट हो जाते हैं, भाव भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और यह नारद मुनि का उदाहरण है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में। जब नारद मुनि व्यास देव को अपनी कहानी बता रहे हैं, उस समय वो बताते हैं कि पिछले जन्म में वो कौन थे और कैसे उनको भक्ति प्राप्त हुई। आजकल जो है, जब आपने भी देखा होगा कि कोई लोग आपसे मिलते हैं तो आपको पूछेंगे आप भक्त बने कैसे, ये बहुत कॉमन प्रश्न है ना। लोग जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि आप क्या, आपके जीवन में हुआ क्या, धक्का आपको पहुंचा कि आप भक्त बने, क्या परेशानी आपके जीवन में हुई। हमें तो अक्सर पूछते हैं कि ऐसी कोई बड़ी समस्या हुई आपके साथ जो आप ऐसे हो गए, मैं समस्या से बच गए कि ऐसे हो गए, है ना। भक्त नहीं होते हम लोग तो कहां होते। तो वैधि साधन भक्ति का उदाहरण नारद मुनि है, क्योंकि नारद मुनि जब वेद व्यास उनको प्रश्न करते हैं कि आप कैसे भक्त बने, तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म का उदाहरण दिया कि मैं एक दासी पुत्र था और वहां कई भक्ति वेदांत आए और उनके अनुमति से मैं उनके कथाओं को सुनता था, उनके नाम संकीर्तन को सुनता था, उनका उच्चिष्ट प्रसाद भी मैंने ग्रहण किया और ऐसे उनकी असीम कृपा प्राप्त की और मुझे भाव भक्ति का स्तर प्राप्त हो गया। तो इससे स्पष्ट आता है, ये आप पढ़िएगा बाद में चल के आप आराम से, बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि नारद मुनि को ने ऐसे विधि विधानों का पालन किया। सत्संग में आकर हम 64 अंगों में से सुनते आए हैं ना, भक्तों का संग करना, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना, भक्तों की सेवा करना, प्रसाद ग्रहण करना, तो इन समस्त अंगों का पालन उस बच्चे ने किया। उस समय केवल 5 साल का बालक था वो पूर्व जन्म में, अब तक नारद मुनि बने नहीं थे वो। तो ऐसे 5 साल की आयु में ही भाव भक्ति को प्राप्त हुए और फिर आगे चल के भगवान की कृपा से प्रेम भक्ति भी प्राप्त हो गई। तो बिल्कुल ये तो उनके पूर्व जन्म के भी सुकृति के अनुसार है ना। कोई अगर वैष्णव कुल में जन्म लेता है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा बहुत विशेष है, उसने पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की है इसलिए उसे वैष्णव कुटुंब मिला है। आएंगे जब कृपा में आएंगे ना तब हम देखेंगे। कृपा के बिना तो कुछ होगा नहीं, ऐसे नहीं कि साधन कर लिया तो बस कृपा की आवश्यकता नहीं है और अपने साधन के बल पर हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, नहीं हो सकता। भगवान की कृपा चाहिए ही चाहिए, परंतु कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध में अंतर यह है कि कृपा सिद्ध साधन नहीं करते या बहुत कम करते हैं फिर भी उनको मिल जाता है, और साधन सिद्ध बहुत परिश्रम करते हैं, साधन करते हैं और फिर उनको भगवान की कृपा मिलके वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। भगवान की कृपा तो दोनों ही अवस्था में आवश्यक है, भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, भगवान की कृपा के बिना कोई नास्तिक भी नहीं बन सकता। भगवान को, भगवान के अस्तित्व को नकारना यह भी कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे अश्रद्धालु भाव पैदा करना है, यहां जब हम देखते हैं कि कोई विद्वान व्यक्ति ऐसे सोच नहीं सकता कि भगवान नहीं है, लेकिन भगवान ऐसे बुद्धि भ्रष्ट करते हैं क्योंकि उसकी इच्छा है, भगवान को नहीं जानना चाहता, तो उसको वो नास्तिक बुद्धि दे देता है, दे देते हैं भगवान। तो भगवान की कृपा की आवश्यकता हर अवस्था में है, परंतु इतना ही है कि जो साधन सिद्ध होते हैं उनको वो कई जन्मों से साधन करते आते और करने के बाद फिर भगवान की कृपा प्राप्त करके सफलता को प्राप्त करते हैं। तो वैधि साधन करके वो भाव को प्राप्त हुए। और दूसरे हैं रागनुग साधन, रागनुग साधन भक्ति करके फिर वो भाव भक्ति को प्राप्त हुए। इसके बारे में उदाहरण है एक महिला का जिनका नाम है चंद्रकांति। पद्म पुराण की कहानी है। वैसे यहां प्रभुपाद जी नाम नहीं देते हैं इस अध्याय में, ये पेज नंबर 133 में है जब पद्म पुराण की कथा आती है। कि एक महिला थी और भगवान को संतुष्ट करने के लिए इस महिला ने रात भर नृत्य किया, भगवान की कृपा प्राप्त कर ली, भगवान के संतुष्टि के लिए नृत्य किया, एक क्षण भी रुकी नहीं वो, और इस प्रकार से भाव प्राप्त कर लिया, भाव भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लिया। नारद मुनि के उदाहरण में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों का संग प्राप्त करना कितना आवश्यक है। जब भक्तों के संग में आकर हम बैठते हैं तो एक नौसुखिया भक्त भी, नवदीक्षित भक्त भी, या नवदीक्षित भक्त की बात तो दूर है, जो भक्त नहीं है वो भी भक्त बन सकता है और सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान के भक्तों के संग में आकर श्रवण करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि बताई गई है। तो दोनों वैधि और रागानुगम है ये विधि है। तो विधि वैधि साधन के लिए उदाहरण नारद मुनि का है अपने पूर्व जन्म में, और रागानुग साधन के लिए है पद्म पुराण से एक महिला चंद्रकांति का। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे कई उदाहरण होते हैं कि कोई भक्त बिना साधन किए हुए अचानक भगवान का भक्त बन जाता है। ऐसे प्रतीत नहीं होता कि उसने कोई साधन किया है, कोई परिश्रम किया है, कोई तपस्या किया है, नहीं, बस पता नहीं क्यों ऐसे कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता, अचानक कुछ हो जाता है। तो इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में वो भक्त था, परंतु किसी वजह से उसने शायद कोई अपराध किए होंगे या कोई ऐसे अड़चन आई होगी जिसकी वजह से वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाया। अब इस जन्म में वो रुकावट हट गई जो उसके और भाव भक्ति के बीच में था, जो रुकावट वो हट गई, और जब हट गई तो फिर वो सीधे पहुंच गए भाव भक्ति की अवस्था में और भाव भक्ति प्रकट हो गया। और इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे कृपा सिद्धि भी तीन प्रकार से होती है। जो अचानक हो जाता है, कोई कारण पता नहीं चलता, तो इसे हमें जानना चाहिए भगवान की कृपा उस भक्त को मिल गई है। तो भगवान की कृपा भी ऐसे तीन प्रकार से आती है। एक है वाचिक, वाचिक मतलब भगवान के वाणी से भगवान बोलते हैं भक्त को। हाँ आइएगा पढ़िएगा नारदीय पुराण में क्या लिखा गया है। तो भगवान ने अपने वचन से, अपने वचनों द्वारा नारद मुनि के ऊपर कृपा बरसाई और उनको भाव भक्ति प्रदान कर दी। ठीक है, तो ये वाचिक कृपा सिद्धि का उदाहरण है। आप चाहे तो आपके किताब में पेंसिल से ऐसे लिख सकते हैं ताकि आप आगे चल के, आपको प्रभुपाद जी खुद लिखा है केवल बोलने से वाचिका है ना। और फिर आगे भगवान अपना दर्शन प्रदान करते हैं कई भक्तों को, और इसके माध्यम से कृपा देकर उनका जीवन सफल बना देते हैं। इसको आलोक दर्शन, आलोक दान कहते हैं, या दर्शन दान, कृपा सिद्ध। आलोक दान या दर्शन दान कृपा सिद्ध।
ये दर्शन ज्ञान ज्ञान है?
नहीं, दान ज्ञान नहीं, आलोक दान या दर्शन दान।
दर्शन
अपना दर्शन देते हैं, अपना दर्शन दूसरों को देते हैं। जैसे यह उदाहरण दिया जा रहा है कि जंगल नाम का एक स्थान था, वहां के निवासियों ने अचानक श्री कृष्ण का दर्शन किया। तो पढ़िएगा स्कंद पुराण में क्या लिखा है।
स्कंद पुराण में चित्वन मात्र से आलोक दान कृष्ण के प्रति भाव प्रेम विकसित होने का वर्णन मिलता है। जब जंगल प्रदेश के लोगों ने भगवान कृष्ण को देखा तो वे इतने भाव विभोर हो गए कि उन पर से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाए।
तो वैसे देखा जाए तो फिर जंगल प्रदेश के निवासी भगवान को देखने के लिए योग्य नहीं थे, परंतु भगवान ने दर्शन उनको दिया, और जब दिया तो वो भाव विभोर हो गए भगवान का दर्शन प्राप्त करके, और भाव भक्ति को प्राप्त हो गए। तो ये उदाहरण है आलोक दर्शन या आलोक दान या दर्शन दान का। जंगल हमें ठीक पता नहीं, ये पुराना भूगोल है, देखना पड़ेगा। जंगल पुराने नाम है सब।
ध्रुव महाराज का भी उदाहरण हो सकता है। ध्रुव महाराज का उदाहरण, ध्रुव महाराज को दर्शन दिया
भगवान, उन्होंने तो साधन किया था ना, तपस्या किया था। आपको याद होगा कई दिन पहले हम ये चर्चा एक श्लोक कह रहे थे उस भगवान के चित्र को देखकर। कौन सा था वो श्लोक आपको याद है? स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साच विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेण गोविंदाख्याम हरि तनुमितः केशी तीर्थोपकंठे मां प्रेक्षिष्ठस्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगः। तो ये जो स्मेराम भंगी और साची विस्तीर्ण दृष्टिम, ये वही बात हुई। जीव गोस्वामी कहते हैं ये भी आलोक दान का एक उदाहरण है। अपने कृपा दृष्टि से, अपनी दृष्टि मात्र से उन्होंने कृपा प्रदान कर ली। भगवान खड़े हैं जग ऐसे खड़े हैं जैसे उन्होंने अब जैसे अभी त्रिभंग रूप में, और जब वो देखते हैं तो ऐसे देखकर ही वो ब्रजवासियों के ऊपर कृपा बरसाते थे। और यहाँ ब्रजवासी से केवल गोपियों का उल्लेख नहीं है, सार जितने भी वहाँ ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी मतलब जो गोप हैं, गोपियां हैं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, जो वृक्ष हैं, जो और जो तृण है, सब सबके ऊपर उन्होंने कृपा बरसाई, केवल उनकी दृष्टि मात्र से दर्शन दिया उन्होंने। अच्छा, अगला है हार्द। हार्द मतलब कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को भगवान की भाव भक्ति हुई, न उसने साधन किया था, न भगवान ने वाचिक कृपा प्रदान की, न ही आलोक दान दिया, फिर भी कुछ हो गया, तो क्या हुआ, ये कृपा आई कहां से? तो हार्द, हार्द मतलब हृदय से संबंधित। तो हृदय के भीतर से बस भगवान ने कृपा प्रदान कर दी। या तो फिर दूसरे ऐसा भी कहा जा सकता है, दूसरा अर्थ निकाला जा सकता है कि भगवान ने हृदय से कृपा प्रदान की, और यह भगवान के भक्तों के द्वारा भी हो सकता है। तो इसके दो भाग हैं, हार्द कृपा सिद्धि के दो भाग हैं। एक है जब कृष्ण ऐसी कृपा करते हैं किसी भक्त के ऊपर, और दूसरा जब कृष्ण के भक्त ऐसी कृपा करते हैं दूसरों के ऊपर। तो कृष्ण द्वारा कृपा का उदाहरण यहां पर दिया हुआ है, तो पढ़िएगा। जहां तक हार्दिक शुभकामनाओं, हाँ,
जहां तक हार्दिक शुभकामनाओं की बात है, सुख संहिता में नारद श्री जैसे कहते हैं तुम्हारा भगवान का परम भक्त है और मैं देख रहा हूँ कि वह वैधि भक्ति का पालन किए बिना ही उन बहुत से लक्षणों से पहले से संबित है जो जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहने पर प्राप्त होते हैं।
तो नारद मुनि ऐसा कह रहे हैं कि सुखदेव जो आपका पुत्र है वो तो माँ के गर्भ में ही भाव भक्ति को प्राप्त हो चुका, उसने तो दूसरे किसी प्रकार से कृपा प्राप्त नहीं की, वो तो माँ के गर्भ में था, भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, भगवान की वाणी कुछ सुनी नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे भगवान की कृपा प्राप्त की उसने। हार दे, भगवान ने हृदय में ही कृपा प्रदान कर ली, अपने हार्दिक आशीर्वाद जो है कृपा है वो प्रदान कर ली। आप तो जानते हैं कि सुखदेव महाराज जो हैं वो माँ के गर्भ में स्थित जब थे उस समय से ही वो मुक्त पुरुष थे और भक्तों के द्वारा जो वैसी कृपा दृष्टि होती है या हार्दिक हार्द कृपा होती है, सबसे पहला उदाहरण है प्रहलाद का। तो जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं प्रहलाद महाराज के चरित्र के बारे में, पढ़िएगा जरा।
हे राजन, प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। उनमें कृष्ण के लिए सहज आकर्षण विकसित हो चुका है और मैं उनके चरित्र के विषय में जो कुछ भी कहूंगा वह सब जाल मात्र होगा। उनके वास्तविक चरित्र का वर्णन कर पाना असंभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रहलाद में भाव प्रेम का सहज उदय भगवान कृष्ण की कृपा के कारण था।
तो फिर कृष्ण कृपा के कारण तो ये भक्तों के द्वारा क्यों कहा गया है, तो आगे पढ़िए।
प्रहलाद में कृष्ण के प्रति यह सहज आकर्षण एकमात्र नारद की कृपा से विकसित हुआ था। जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तो नारद उनकी माता को भक्ति योग के विषय में दयावश उपदेश देते थे और साथ ही वे यह चाहते थे कि गर्भ शिशु भी उनके उपदेशों से लाभान्वित हो। चूंकि भगवान के प्रमाणिक भक्त एवं महान पार्षद नारद प्रहलाद महाराज की मंगल कामना चाहते थे, अतः उनमें महाभागवत के सारे गुण विकसित हो गए। यही सहज आकर्षण है, यह भगवान की विशेष कृपा से या नारद जैसे महाभागवत की विशेष कृपा से ही संभव है।
तो ये उदाहरण है कि नारद जी ने प्रहलाद के ऊपर कृपा की थी जबकि प्रहलाद माँ के गर्भ में थे। और एक उदाहरण, अंतिम उदाहरण यहाँ है स्कंद पुराण का। किन का है ये उदाहरण? मृगारी का। पढ़िएगा।
स्कंद पुराण में वर्णन पर स्कंद पुराण पर्वत मुनि नारद से कहते हैं, हे नारद, तुम समस्त संतों में इतने महान एवं यशस्वी हो कि तुम्हारी शुभकामना से ही अधम जाति में विकसित व्याद इतना महान कृष्ण भक्त बन गया। भगवान के भाव प्रेम।
ठीक है, ठीक, बस। तो यह नारद मुनि की कृपा मृगारी के ऊपर हुई थी, इसलिए मृगारी जो इतना क्रूर व्यक्ति था, पापी व्यक्ति था, आज इतना संत बन गया। तो इस प्रकार से भाव भक्ति को प्राप्त करने के ये दो मार्ग हैं, साधन और कृपा। तो साधन सिद्धों का उदाहरण दिया हुआ है और कृपा सिद्धों का। ठीक है, तो अब कोई प्रश्न रह गए, कोई संशय वगैरह कृपा सिद्धि और साधन सिद्धि में? आप प्रश्न पूछ रहे थे, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया।
जो कृपा सिद्ध जो भक्त हैं जिनको कृपा से वो भक्त बनते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं साधना तो की होगी तभी उनको कृपा मिलती है।
ऐसा भी है और नहीं भी की होगी, फिर भी अगर भगवान चाहें तो पूरी तरह से दे सकते हैं।
भगवान तो निष्पक्ष होते हैं, भगवान तो निष्पक्ष होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति को
क्योंकि भक्तों ने कुछ कृपा की है, जब भक्त को कृपा करते हैं तो भगवान बाध्य होते हैं, उनको भी कृपा देना पड़ता है। परंतु जैसे यहां प्रभुपाद जी चर्चा कर चुके हैं कि जब ऐसे देखा जाता है कि अच्छा पढ़ ही लीजिए उसको, फिर आइए पेज पीछे घुमाइए जरा, किंतु कभी कभी देखा जाता है 135 पढ़िएगा,
कभी कभी देखा जाता है कि किसी प्रकार की भक्ति के बिना ही सहसा कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है। मनुष्य भक्ति भाव की इस सहसा उत्पत्ति को कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा समझना चाहिए। कृष्ण की अहित की कृपा के माध्यम से भावों की सहसा उत्पत्ति की तीन
ठीक है। तो इसका मतलब है कि अचानक कभी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बिना साधन किए हुए बस हो गया, तो पूर्व जन्म में तो किया था, कुछ रुकावट थी बीच में, कुछ अपराध किया होगा, अब उस अपराध से मुक्त हो गए, भगवान की कृपा हुई, लेकिन इस जन्म में ऐसे दिखाई नहीं पड़ता कि उन्होंने कुछ साधन किया है। ठीक है, समान नहीं, साक्षात भगवान है, भगवान के समान नहीं। जब हम समान कहेंगे इसका मतलब है कि दोनों भिन्न हैं, लेकिन समानता नहीं, ये एकता है। हमें स्वीकार भी करना चाहिए, जैसे हमने पहले चर्चा की थी, कई उदाहरण दिए हुए थे कि एक व्यक्ति बस उसने मंदिर में बैठा और भगवान के धाम में चला गया, थोड़े समय के लिए बैठा, और उस संदर्भ में क्या चर्चा हो रही थी कि ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं शास्त्रों में, हमें समझना नहीं चाहिए कि ये अतिशयोक्ति है, याद है कि बढ़ा चढ़ा के बातें हुई हैं, लेकिन वहां प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, किसी को याद है क्या कहते हैं प्रभुपाद जी उस समय? ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं उसके पहले? तो जो कहा गया है वो सही है या नहीं है?
सही।
किन के लिए? जिनका वर्णन है उनके लिए सही है, हो सकता है हमारे साथ ऐसा न हो, ऐसे कहा ना प्रभुपाद जी ने, याद है? क्योंकि एक व्यक्ति ने कहीं कुछ मंदिर में बैठ लिया, वो दर्शन किया, फिर ये हो गया, भगवान के धाम में चला गया, हम रोज कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है ना? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतिहास होता है हर एक जीव का इस भौतिक जगत में, हर एक व्यक्ति का क्या इतिहास है हम नहीं जानते, हम तो केवल इस जन्म की बात देखते हैं, परंतु उस व्यक्ति के लिए अगर वो हुआ भी होगा ऐसे, जरूर आवश्यक नहीं कि हमारे साथ ठीक उसी प्रकार से होगा कि एक क्षण के भीतर ऐसे हो जाएगा। हाँ, लाभ अवश्य हमें होगा कि हम भी धीरे धीरे प्रगति करेंगे, जैसे हम कह रहे थे वो दरवाजे की कड़ी खुल गई है ना, उतना तो अवश्य हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान हमें देखते हैं, हमें दर्शन देते हैं, तो हमारे साथ वैसा नहीं होता जैसे जंगल प्रदेश के लोगों से हो गया, वो भी योगी नहीं थे, देखा और भगवान आए, उनके बीच में से गुजरे भगवान और भाव भक्ति प्राप्त हो गई, हम तो रोज दर्शन करते, नहीं होता। तो ये उनकी भी कोई पूर्व जन्म की कोई सुकृति हुई होगी, भगवान ने भी कोई कारण से विशेष कृपा प्रदान की उनके ऊपर। तो सिद्धांत सही है, लेकिन हमारे साथ नहीं हो रहा ये अलग बात है कि एक बार दर्शन करके हम तुरंत देखें, क्योंकि हमें ये श्रद्धा होनी चाहिए कि जो हम देख रहे हैं वो भगवान है। और उस प्रेम की भावना से नहीं भी हो तो उस प्रेम की भावना से देखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, 18वां अध्याय भाव प्रेमी का चरित्र। हम पहले देख चुके हैं कि भाव भक्ति का एक लक्षण है चित्त मासृण्य। मतलब क्या है? चित्त का क्या हो जाता है? कोमल हो जाता है। और कोमल हो जाने से क्या होता है कि तरह तरह के भक्ति की भावना उमड़ने लगती है हृदय में। तो ऐसे देखा जाता है अक्सर कि कई लोग जो वास्तव में भक्ति में उतने पहुंचे हुए नहीं हैं, फिर भी ऐसे भावों की नकल करते हैं। वो नकल करके वो दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत उन्नत भक्त हैं। तो कैसे पहचाना जा सकता है? दूसरी ओर ऐसे भी कई भक्त हैं जो वास्तव में भाव भक्ति के स्तर में स्थित हैं, परंतु वो अपने भाव को प्रकट होने नहीं देते हैं, वो ढक देते हैं अपने भावों को। तो अगर हम कहेंगे कि केवल जो भक्ति के लक्षण है वो विकार है जो शरीर में प्रकट होते हैं, आंसू है, रोंगटे खड़े होना है, ये वो सब करेंगे, तो इससे शायद हम ठीक ठाक पहचान नहीं पाए कि कौन भाव भक्ति को प्राप्त हुआ है और कौन नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया है कि उन्होंने ऐसे 9 लक्षण दिए हैं, चिन्ह दिए हैं, जिनसे स्पष्ट रूप से हम जान पाएंगे कि क्या कोई भक्त भाव भक्ति को प्राप्त हुआ है वास्तव में या नहीं। यहां इनका नकल नहीं किया जा सकता, भले कोई आंसू वगैरह का नकल करे, परंतु इन 9 चीजों के निकट की नकल नहीं की जा सकती, ठीक है ना। तो आगे रूप गोस्वामी इन 9 गुणों का वर्णन करेंगे। उल्लेख करने के बाद हर एक गुण के बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं। अच्छा, वो चार्ट लगाएंगे कृपया, जो लक्षण है जो, तो आपकी किताब में ही आप ये देख सकते हैं। आप अलग से नहीं भी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि किताब में है ही, वैसे केवल संक्षेप में हमने लिखे हैं। भाव भक्ति में स्थित भक्त के गुण 9 होते हैं। आखिरी वाला प्रीति नहीं है, प्रीति, प्रीति मात्रा दीर्घ है, ठीक है। तो पहले 9 इनका उल्लेख करके अब प्रभुपाद जी चर्चा करेंगे इनके बारे में। पहली बात, अव्यर्थ कालत्वम। पढ़िएगा, इसका क्या मतलब है? समय ने टाइटल क्या है, शीर्षक क्या?
समय का सदुपयोग,
अव्यर्थ कालत्वम। हाँ, बस प्रभुपाद जी यह कहते हैं कि वास्तव में जो भाव भक्ति को प्राप्त हुआ है वो अपना एक भी क्षण बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसका सारा जीवन जो है पूरी तरह से समर्पित रहता है भगवान के चरणों में। वो समझता है कि हर एक क्षण बहुत मूल्यवान है, और अगर वो एक क्षण का भी नुकसान करेगा तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने मन में वो सदा कृष्ण का स्मरण करता है, अपने वाणी से वह सदैव कृष्ण के बारे में ही बोलता है या कृष्ण का नामोच्चारण करता है, अपने शरीर से या तो वो भगवान को प्रणाम करता है या अन्य सेवाएं करता है। इस प्रकार से वो पूरी तरह से क्रियाशील रहता है भगवान की सेवा में, बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करता, उसमें आलस नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो यह है अव्यर्थ कालत्वम। और और फिर है क्षांति। अध्यवसाय या क्षांति ही। अच्छा पहला लाइन पढ़िएगा इसका।
जब कोई व्यक्ति विभिन्न बाधाओं के आने पर भी चुप नहीं होता तो वह संयमी तथा अध्यायवासी कहलाता है।
अध्यवसायी सहनशील होना बहुत। तो बाधाएं जब आती हैं जीवन में उनके उनके होते हुए भी जब व्यक्ति विचलित नहीं होता है उसे हम शांति कहते हैं। और इसका उदाहरण प्रभुपाद रूप गोस्वामी क्या दे रहे हैं, किनका दे रहे हैं? महाराज परीक्षित। क्यों महाराज परीक्षित का उदाहरण है शांति के लिए? बिल्कुल, वो हाय हाय हो हो में अपना समय बर्बाद नहीं किए। समझ लीजिए कि आज अगर किसी को पता होता कि आपको 7 दिन है तो सबसे पहले व्यक्ति का क्या करता? सीधे पहले डॉक्टर के पास जाता, 7 के 7 दिन हॉस्पिटल में बिताता और मृत्यु होनी है जो होनी है तो वहीं पे चले जाता। लेकिन महाराज परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। अगर वहां नहीं जाता तो और कहां जाता? वकील के पास जाता है ना। तो ऐसे कुछ ना कुछ करके करके फिर इनको देखो ये संसार में कितने सारे जिम्मेदारियां हैं वो सब करते करते 7 दिन बिता देता उस मृत्यु को टालने के लिए। लेकिन मृत्यु तो टाला नहीं जा सकता, फिर ऐसे ही व्यर्थ फिर उसका जीवन चले जाता। लेकिन परीक्षित महाराज बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। तुरंत अपने पुत्र जिनका नाम था जनमेजय को राज सिंहासन पर बिठाया और वो चले गए वन में। और हालांकि उनको बिल्कुल अच्छी तरह से पता था कि उनको जीने के लिए केवल 1 हफ्ता था, लेकिन मन उनका विचलित नहीं था। उन्होंने सही प्रश्न किए ऋषि मुनियों से, और जब सुखदेव गोस्वामी आए फिर उनसे उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवत सुना, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। और फिर तीसरा है विरक्ति या वैराग्य। अच्छा पहला लाइन पढ़िएगा, पहले 2 लाइन। क्योंकि हस्तिनापुर के पास में था ना, वो तो हस्तिनापुर में राज्य कर रहे थे तो वन की ओर निकल पड़े। गंगा जी तो पावन, गंगा जी का तट जो है वो तो पावन भूमि है, तो वहां जाकर वो सोच रहे थे वहां कोई ऋषि मुनि मिले मुझे, मैं तो उपवास करके अपना प्राण त्यागने के लिए आया हूं। इस हेतु वहां पर आए, वो भगवान की योजना थी क्योंकि वहां पर सुखदेव गोस्वामी भी दूसरे रास्ते से आ रहे थे। अच्छा विरक्ति पढ़िएगा। जब एक स्वाभाविक घृणा हो जाती है इंद्रिय भोग के विषयों से तब ये विरक्ति कहलाती है। रूप गोस्वामी ने हरेक शब्द का को चुन चुन के इस्तेमाल किया है। और इसके लिए उदाहरण है किनका? भरत महाराज। क्यों ऐसा उदाहरण दे रहे हैं?
क्योंकि उनके पास इतना ऐश्वर्य था उसको होते हुए भी वैराग्य
था। किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। जब उनके पास सब कुछ था, ऐसा नहीं कि अंगूर खट्टे थे इसलिए वो चले गए, है ना? सब कुछ था उनके पास फिर भी छोड़ के चले गए। उत्तम श्लोक लालसा, क्योंकि उनको लालसा थी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की। यो दुस्तिजान दार सुतान तो उन्होंने त्याग दिया अपने पत्नी, अपने रानियों को, अपने बच्चों को, अपने राज्य को, सुहृत स्पृशः राज्यम सुहृत स्पृशः, अपने राज्य को, शुभ चिंतकों को। मलवत, जैसे व्यक्ति मल को त्यागता है वैसे इन सब चीजों को उन्होंने त्याग दिया। क्यों? उत्तम श्लोक लालसा। तो ये भाव, महाराज भरत जो है इनका स्तर भाव भक्ति का है, और उन्होंने विरक्ति का गुण अपने जीवन से प्रदर्शित कराया। और प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि ऐसे आकर्षणों के रहते हुए भी कोई भौतिक अनुरक्ति से अनाकृष्ट रह सकता है तो वह विरक्त कहलाता है। जब कुछ होता नहीं है और फिर हम कुछ त्यागते हैं तो ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल के हिसाब से फिर भी बहुत कुछ है, परंतु उतना नहीं है। लेकिन इतना सब होते हुए और ऐसे आकर्षणों से घिरे हुए थे वो, फिर भी वो छोड़ गए और उनसे प्रभावित नहीं हुए। आगे, मान शून्यता निरअभिमानता। अच्छा, इसका मतलब क्या है? पहले एक लाइन को पढ़िएगा।
जब कोई भक्त शुद्ध साक्षात्कार के समस्त गुरु से संबित होकर भी अपने पद का गर्व नहीं करता तो वह निर्भिमानी कहलाता है।
तो जब किसी का कोई ऊंचा पद होता है और ऊंचा पद होने के बाद भी व्यक्ति नम्र होता है तो फिर हमें जानना चाहिए कि ये बहुत विशेष गुण है। वैसे देखा जाता है दुनिया में किसी का पद नहीं भी हो फिर भी वो घमंडी होता है, और वही व्यक्ति को जब पद प्राप्त होगा तो वो क्या होगा भगवान जाने, है ना। तो ये आजकल एक तरीका ही है, कोई नम्र रहना नहीं चाहते, सभी लोग घमंड से बात करना चाहते हैं। जहां भी आप जाइए, सड़कों में देखिए, रेलगाड़ियों में देखिए, जहां भी जाइए, परंतु जो भाव भक्ति के स्तर में होते हैं वो ऊंचा स्तर प्राप्त करने के बाद भी नम्र ही रहते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं अपने पद से। और इसके लिए उदाहरण किनका है? भगीरथ महाराज। भगीरथ महाराज सारे पृथ्वी के राजा थे, परंतु जब उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, ये एक प्रथा थी वैदिक राजाओं के लिए, एक ऐसी उम्र आ जाती थी जब वो सब कुछ त्याग के जंगल में चले जाते थे। तो भगीरथ महाराज इतने ऐश्वर्यशाली राजा थे, शक्तिशाली थे, और उन्होंने अपने शत्रुओं का दमन कर लिया था, परंतु जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वानप्रस्थी जीवन, विरक्त जीवन बिताना शुरू किया, तो अपने शत्रुओं के राज्य में जाकर भी वो भिक्षा मांगते थे। आप तो जानते हैं कि भिक्षा मांगना ये बहुत आसान कार्य नहीं है, क्योंकि लोग अपमान करते हैं, है ना, लोग कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, बहुत भले बुरे कुछ बोल देते हैं। तो महाराज भगीरथ सारे पृथ्वी के राजा थे, सारे पृथ्वी के ऐश्वर्यों से युक्त थे पहले, पर उन सब कुछ त्याग के भिक्षा मांगने के लिए अपने शत्रुओं के राज्य में भी गए। व्यक्ति सोचे कम से कम मैं शत्रुओं के पास तो नहीं जाऊंगा, भी कहीं भी मांगू लेकिन उनके पास नहीं जाऊंगा, परंतु महाराज भगीरथ ने ये भेद नहीं किया, उनके पास भी गए। और प्रभुपाद जी और एक उदाहरण दे रहे हैं कि 200 साल पहले लाल बाबू मान नाम के एक जमींदार थे कलकत्ता में, जो वैष्णव बने और वृंदावन में आए, और वो सब जगह भिक्षा मांगने जाते थे। अच्छा, आगे आशा बंध पढ़िएगा।
ये दृढ़ विश्वास है कि भगवान की कृपा अवश्य होगी। संस्कृत भाषा में आशा बंध ये आशा बंध कहलाता है। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है ये सोचते रहना कि टूटे हुए भक्ति के समान है नियमों का यथाशक्ति पालन कर लाने। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा।
आशा बंध, ये आशा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो मार्ग को अपनाया है ये सही है और मुझे सफलता मिलके ही रहेगी, क्योंकि भगवान बहुत कृपालु हैं और भगवान करेंगे ही करेंगे कृपा मेरे ऊपर एक न एक दिन, और जीवन सफल बनाएंगे। तो केवल मैं भक्ति करते रहूंगा तो एक न एक दिन कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और इस संदर्भ में रूप गोस्वामी एक प्रार्थना कहते हैं यहां पर, जिसमें वो कहते हैं कि वास्तव में सनातन गोस्वामी की प्रार्थना है, हालांकि रूप गोस्वामी ने लिखी है, लेकिन वो भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि ये सनातन गोस्वामी ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं मुझे मेरे हृदय के अंदर ना कृष्ण प्रेम है, ना और कोई किसी पद्धति को का पालन करने के लिए कोई योग्यता है, जैसे सांख्य योग हो, अष्टांग योग हो, कर्म योग हो, वानप्रस्थ या वर्णाश्रम के कर्तव्य हो, कोई भी योग्यता नहीं है। और किसी प्रकार से मैं तो नहीं सोचता कि मैं आपके चरणों के प्रति या चरणों के करीब में अग्रसर हो सकता हूं, फिर भी मैं आशा करता हूं कि आप एक न एक दिन मेरे ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि मैं सबसे अधम व्यक्ति हूं। ये भाव रखते हैं रूप गोस्वामी। आखिरी लाइन पढ़िएगा इस आशा बंध का।
आशा बंध शीर्षक के अंतर्गत मनुष्य को भ्रूण दशा में नहीं रहे,
भाव यह है
लास्ट यह है कि आशा बंध शीर्षक के अंतर्गत मनुष्य को भ्रूण दशा में भी यह आशा बनाए रखना चाहिए कि वह किसी न किसी तरह भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाएगा।
एक न एक दिन, लेकिन साथ साथ में हमें धीरज भी रखना है। ऐसा नहीं कि 1 साल में 2 साल में नहीं हुआ तो हम छोड़ गए भक्ति को, नहीं ऐसा नहीं, धीरज भी रखना है। फिर आगे समुत्कंठा, वांछित सफलता की प्राप्ति हेतु उत्सुकता, हाँ, इसकी परिभाषा क्या है जरा पढ़िएगा।
जब कोई व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो वह उत्सुकता समुत्कंठा कहलाता।
समुत्कंठा, हाँ आगे।
इसका अर्थ है न्यून उत्कंठा, उत्सुकता।
ठीक है, तो पहले भी हम देख चुके हैं एक श्लोक, आपको याद है हम भक्ति खरीदने की बात कर रहे थे, किसी को याद है वो श्लोक?
किसी भी मूल्य पर हमें खरीद लेना
चाहिए। कौन सा है वो श्लोक? सही है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। तो अगर आपको कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही, ये कृष्ण भक्ति का भाव ये रस आपको अगर चाहिए तो खरीद लीजिए, शीघ्र ही खरीद लीजिए, जहां भी उपलब्ध हो वहां खरीद लीजिए। परंतु इसके लिए मूल्य क्या है, कितने रुपए हैं इसके मूल्य? इसका मूल्य लौल्यम होना चाहिए, लालसा, लौल्यम मूल्य है ये, लोभ होना चाहिए। जब तक ये लोभ नहीं होगा तब तक हम ये खरीद नहीं पाएंगे। जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते, कोटि कोटि जन्मों से हम सुकृति करते रहेंगे फिर भी नहीं होगा। तो इसलिए समुत्कंठा का मतलब है कि तीव्र लोभ हृदय में होना भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए। और इसके लिए उदाहरण है कृष्ण करणामृत से। बिल्वा मंगल ठाकुर क्या कहते हैं, बिल्वा मंगल ठाकुर की समुत्कंठा को हम आज सुनते हैं, उनकी क्या, उनका क्या लोभ है?
मैं वृंदावन के उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिसका शारीरिक सौंदर्य सारे विश्व को मोहित करने वाला है, जिनके नेत्र श्याम भवों से बद और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं और जो निरंतर अपने भक्तों पर उत्सुकता पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं, अतएव इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, उनके नेत्र सदैव नीले, उसके ओठ ट्राम जैसे रंग वाले रहते हैं तथा इन ओठों से एक ध्वनि निकलती है जो मनुष्य को मंद अंत हाथी से भी अधिक उन्मत बना देती है। उसका दर्शन वृंदावन में उत्सुकता से करना चाहिए।
तो ये एक प्रकार की उत्कंठा है, सम उत्कंठा, सम्यक उत्कंठा मतलब परिपूर्ण उत्कंठा, तीव्र लोभ, ये भाव भक्ति का और एक गुण है, लक्षण है। लेकिन यहां आजकल उत्सुकता लोगों को क्या करने होती है कि ऐसा नहीं कि हम कृष्ण को देखें, हम कृष्ण का उस रूप को देखना चाहते हैं, नहीं, वो कोई और उत्कंठा होती है, संसार के प्रति, संसार के वस्तुओं के प्रति उत्कंठा होती है। लेकिन भाव भक्ति के स्तर में केवल कृष्ण के लिए समुत्कंठा होती है। अच्छा, आगे चल के भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में अनुरक्ति, इसको कहते हैं नाम गाने सदा रुचि ही। फिर से कृष्ण करणामृत का उदाहरण है, बिल्वा मंगल ठाकुर, राधा रानी की एक सखी कहती है, हे गोविंद, अब राजा वृषभानु की पुत्री अश्रुपात कर रही है और वह आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता से उच्चारण कर रही है। तात्पर्य यह है कि बहुत उत्साह होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए भगवान के नामोच्चारण में। आगे भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करने की उत्सुकता, इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं तत् गुणाख्याने आसक्ति ही। तत् मतलब उनका, कृष्ण के गुणों का आख्यान करने में आसक्ति। फिर से कृष्ण कर्णामृत से एक उदाहरण है, कृष्ण कर्णामृत में भगवान की महिमा के कीर्तन की अनुरक्ति का भी वर्णन इस प्रकार हुआ है, मैं उस कृष्ण के लिए क्या करूं जो समस्त आनंद की धारणाओं में से अधिक आनंद प्रद हैं और जो चंचल बालकों से भी अधिक नटखट हैं। कृष्ण के सुंदर कार्यकलापों के विचार से मेरा मन आकृष्ट हुआ जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अंत में कृष्ण की लीला स्थली में रहने का आकर्षण। कोई पढ़िएगा, अलग अलग भक्तों को।
रूप गोस्वामी को पद्मावली में वृंदावन के विषय में यह कहा गया है कि इस स्थान पर समस्त ग्वालियर के राजा नंद महाराज का पुत्र अपने पिता के साथ रहता था। इसी स्थान पर कृष्ण ने उस शकट का भंजन किया जिसमें शक्तासुर असुर छिपा था। यहीं पर हमारे भगवंदन की ग्रंथि काटने वाला दामोदर अपने माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधा गया था। कृष्ण का भक्त मथुरा या वृंदावन जिले में निवास करता हुआ उन समस्त स्थानों का भ्रमण करता है जहाँ जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की। इन सभी पवित्र स्थानों पर कृष्ण ने ग्वाल बालों एवं माता यशोदा के संग अपनी बाल्यकाल की क्रीड़ाएं की। आज भी रामकृष्ण भक्तों में इन स्थानों की परिक्रमा करने की प्रथा चालू है और मथुरा तथा वृंदावन की यात्रा करने वाले सदैव दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यदि कोई वृंदावन जाता है तो तुरंत ही उसे कृष्ण का वियोग सताने लगता है जिन्होंने वहां रहकर ऐसी सुंदर क्रिया की थी।
तो रूप गोस्वामी कहना चाह रहे हैं पद्यावली के श्लोक में कि वो दिन कब आएगा जबकि मैं सारे मथुरा मंडल में ब्रजभूमि में घूमूंगा और इस प्रकार से भगवान की लीला स्थली में जाकर मैं किसी एक वरिष्ठ ब्रजवासी जो प्रेमी भक्त हैं उनके मुखारविंद से ऐसे अमृत की धारा सुनूंगा कि ये स्थान वहां है, यहाँ ये स्थान वो है जहाँ कृष्ण दामोदर लीला हुई थी, या इस सब सारी लीला स्थलों का वर्णन सुनना, कब वो दिन आएगा। तो वो भी एक प्रकार की प्रीति है, उत्कंठा है भगवान के धाम के बारे में। अब रूप गोस्वामी चेतावनी देते हैं, कि ऐसे कई लोग हैं जो भक्त नहीं हैं, जैसे कोई ज्ञानी है, कोई कर्मी है, और कभी कभी ऐसे प्रतीत हो सकता है बाहरी रूप से कि इनके शरीर में भी ऐसे अष्ट सात्विक विकार आदि सब प्रकट हो रहे हैं जैसे कि भाव भक्तों में होते हैं, परंतु क्योंकि वो भक्त नहीं हैं इसलिए उनकी तथा कथित जो भाव हैं उनको रति या भाव भक्ति हम नहीं कह सकते। इसी बात को यहां पर रूप गोस्वामी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं और वो कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण साधारण भक्त को भी आसानी से जब भाव भक्ति प्रदान नहीं करते तो अभक्तों को कहां से देंगे। आपको याद है ये कहां चर्चा की थी हम लोगों ने कि भगवान कृष्ण भक्ति आसानी से देते नहीं है, कहां चर्चा हुई थी? सुदुर्लभा, इसमें क्या चर्चा हुई थी बताइए? क्योंकि जब वो कृष्ण प्रेम या भाव प्रदान करते हैं तो उस व्यक्ति के कृत दास बन जाते हैं, इसलिए भगवान आसानी से नहीं देते हैं, क्योंकि केवल जो ऐसे लोभ से उनकी सेवा करते हैं उनको मात्र वो ऐसे प्रदान करते हैं, और जो ऐसे लोभ से करते भी हैं तो ऐसे नहीं कि शीघ्र ही वो प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी समय लेते हैं। इसलिए जब भगवान कृष्ण इतनी आसानी से भक्तों को भी नहीं देते हैं भाव, तो फिर मायावादियों को कर्मियों को भला कैसे देंगे, तो उनमें यह भाव के वास्तविक लक्षण कैसे प्रकट हो सकते हैं, ये संभव नहीं है। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो कृत्रिम रूप से भगवान के नित्य लीलाओं का स्मरण करते हैं, अष्टकालिक लीला, मतलब जो भगवान ने सुबह को क्या किया, दोपहर में क्या किया, शाम को क्या किया, अष्टयाम कहते हैं उसे, अष्टयाम मतलब 3 घंटे का एक याम होता है, एक काल 3 घंटे का, तो 8 ऐसे याम जो 24 घंटे हो जाते हैं। तो भगवान के धाम में गोलोक वृंदावन में 3 घंटों की कार्य लीलाएं जो है अलग 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 होती हैं, सुबह 3 से सुबह 6, सुबह 6 से सुबह 9, 9 से 12, ऐसे अलग अलग लीलाएं हैं। तो कृत्रिम रूप से ऐसे कई लोग हैं जो इनकी नकल करते हैं और वो ऐसा सोचते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मानो कृष्ण हमारे साथ में है, राधा कृष्ण हम उनके संग में बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। प्राकृत सहजीय लोग जो हैं वृंदावन में भी ऐसे कई लोग पाए जाते हैं, और कभी कभी ऐसे मायावादी लोग भी कर लेते हैं। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि क्या होता है इससे कि जो मासूम जनता होती है वो प्रभावित हो जाती है, वो ऐसे सोचने लगते हैं कि हाँ ये वास्तव में बहुत ही भाव भक्त है, बहुत ही प्रेमी भक्त है ये। एक बार ऐसे हुआ कि जब हरिदास ठाकुर एक जगह आए थे, वहां एक एक व्यक्ति था जिसने सांप को पाला हुआ था। आपने देखा होगा कई जगह यहाँ आते हैं ना, सांप को वाद्य बजाकर वो सांप फिर ऊपर ऐसे अपने डसों को ऐसे हिलाता है, तो वो भी नृत्य करता है अपने तरीके से। तो जब और फिर वो जो सांप संभालने वाला आदमी था वो भी वैष्णव था, तो अपने भाषा में वो कृष्ण लीला का कुछ वर्णन करने लगा, कालिया का। तो हरिदास ठाकुर वहां पर पहुंचे और भाव विभोर होकर नीचे गिर गए जमीन पर। तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए हरिदास ठाकुर के भाव को देखकर। तो उस समय वहां एक ब्राह्मण भी था, तो उसने सोचा अच्छी बात है, केवल ऐसा कुछ करने से सभी लोग वाह वाह करते हैं, बहुत प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, तो मैं भी करना शुरू करूं। तो उसने नकल करना शुरू कर दिया और वो भी गिर पड़ा, रोने लगा। तो वहां जो सांप को संभालने वाला आदमी था उसने एक लाठी ली और बड़े कस के उसे बहुत पिटाई की, उसकी बहुत मारा उसको। तो वो बेचारा बोलने, बेचारा तो नहीं खैर ढोंगी था, तो वो कहने लगा भाई कि मुझे क्यों पीट रहे हो, उनको क्यों नहीं पीटा, मैं जो कर रहा हूं वो भी कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि तुम तो ढोंग कर रहे हो, वो तो सच थे, वास्तव में उनका भाव था, लेकिन तुम तो ढोंगी थे। तो सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, सभी लोग देखकर सो भेद नहीं कर सकते कि सही कौन है और नकली कौन है। अगर किसी ने कर दिया तो हाँ ये वास्तव में ये अच्छे भक्त हैं, बहुत ऊंचे भक्त हैं। और भारत में तो बिल्कुल तत्व ज्ञान नहीं है लोगों में, तो कोई भी कुछ चमत्कार दिखा देता है, कोई सोना विभूति निकाल देता है, उसको भगवान मान देते हैं। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो अनुभवी भक्त है वो तुरंत भेद कर सकता है कि सही भाव क्या है और नकली क्या है। और अगर ऐसा नकली भक्त जो है या कोई कर्मी है, ज्ञानी है, उसके मन में ऐसे भी भाव कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, तो फिर भी हमें जानना चाहिए कि ये सच नहीं है। ऐसे कई बार ये होता है कि भक्तों के संग में आकर किसी व्यक्ति में कभी कभी ऐसे कोई भी लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये सही भाव नहीं है, इसको भाव का आभास कहते हैं। भाव का और एक शब्द है रति, भाव और रति ये एक ही है, तो इसको जान लीजिए आप, रति और भाव एक ही, तो इसलिए इसको रत्याभास कहते हैं रूप गोस्वामी। रत्याभास मतलब रति आभास, रति का आभास। अच्छा, और रत्याभास के बारे में चार्ट्स हैं जरा बताएंगे, हम लगाएंगे। हाँ, यही है। हाँ, इसके ऊपर लगा दीजिए। रत्याभास, रति आभास मतलब भाव का आभास, सच्चा भाव नहीं है ये। कभी कभी ऐसे लक्षणों से एक आध बार को लगता है कि ये सही है, परंतु जो अनुभवी भक्त है वो अच्छी तरह से पहचान लेते हैं कि ये नकली है ये। तो ये प्रतिबिंब आभास भाव, रत्याभास या प्रतिबिंब आभास, पढ़िएगा कोई, इस अनुकरणीय अनुरक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं।
इस अनुकरणीय अनुरक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं, छाया अनुरक्ति तथा परा दिव्य अनुरक्ति। यदि कोई भक्ति के नियमों का पालन किए बिना या प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकरणीय अनुरक्ति प्रदर्शित करता है तो यह छाया अनुरक्ति प्रत्याभास कहलाती है।
अभी यहाँ प्रभुपाद जी रत्याभास की बात करें, ये छाया से आप कंफ्यूज मत होइए, अभी वो रत्याभास प्रभुपाद जी इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा आगे पढ़िए।
कभी कभी यह देखा जाता है कि भौतिक भोग या मोक्ष में वास्तव में लिप्त व्यक्ति को सौभाग्यवश ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाती है जो भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में लगे रहते हैं। भगवत कृपा से ऐसा व्यक्ति कीर्तन में सम्मिलित हो सकता है। उस स्थिति में ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से उनके हृदय की चंद्र रश्मियों की छाया उस व्यक्ति पर पड़ती है और उनकी संगति के प्रभाव से वह जिज्ञासावश उसी तरह से अनुरक्ति प्रदर्शित कर सकता है, किंतु यह क्षणिक होती है। और यदि ऐसी छाया अनुरक्ति के प्रकट होने से किसी के समस्त भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं तो यह परा अनुरक्ति कहलाती है।
तो इसके पहले जो पढ़े थे आप, कभी कभी ऐसा पाया जाता है, तो ये प्रतिबिंब आभास है जो भक्तों के हृदय में जो भाव का चंद्र है उसका प्रतिबिंब संग के द्वारा उस दूसरे व्यक्ति में चले जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के हृदय में ये प्रतिबिंब आभास होता है जो भगवान की भक्ति बड़ी तीव्रता से करते हैं परंतु उनके हृदय में भोग या मोक्ष इन दोनों की काम ये दोनों कामनाएं एक या दो कोई कामना होती है, इसलिए उनको सही रति या सही भाव नहीं मिलता। तो उनके अंदर संग के प्रभाव से कोई ऐसे भाव आ भी जाता है तो भाव का आभास है, इसको प्रतिबिंब आभास कहते हैं। तो इनकी विशेषता ये है कि इनका भाव विकृत होता है अपने भोग वृत्ति से, इसलिए सच्चा भाव नहीं कहलाता। और दूसरा है छाया आभास। छाया आभास में क्या है कि व्यक्ति का भाव इतना तीव्र नहीं होता परंतु उसे एक भौतिक जिज्ञासा होती है जिसकी वजह से वो भक्तों के संग में आता है और थोड़ा बहुत थोड़े समय के लिए क्षणिक कोई भाव प्रकट होता है। ये इतना तीव्र नहीं होता जितना कि प्रतिबिंब आभास में होता है, परंतु ये प्रतिबिंब आभास से श्रेष्ठ है क्योंकि यहां कम से कम जो विकृति है भोग की वो तो कम है, बहुत कम है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें सच्चे भाव और भाव के आभास में अंतर देखना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, हम आपको केवल सार बता देंगे, कि जिस प्रकार से भक्तों के संग से भाव प्रकट हो जाता है किसी व्यक्ति में, वो साधन भक्ति के स्तर से भाव भक्ति में प्रगति कर सकता है। अगर उसी भक्तों के संग में उस व्यक्ति ने अपराध करना शुरू कर दिया और अगर वो अपराध बहुत ही गंभीर हुआ तो उसका भाव तक भी पहुंच गया होगा तो उसका भाव नष्ट हो जाएगा, और अगर उसका अपराध मध्यम रहा तो और अगर वो भाव भक्ति के स्तर में है तो भाव से भाव के आभास के स्तर में आ जाएगा, और अगर उसका अपराध हल्का है फिर वो एक निम्न श्रेणी के भाव में आ जाएगा, ऐसा प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद चेतावनी देते हैं कि भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वो वैष्णवों के प्रति अपराध न करें। भाव को नष्ट करने वाला और एक विचार है, और वो है मायावाद दर्शन। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि मैं भी भगवान हूं, तो फिर इससे क्या होगा, अगर भाव आया भी हुआ होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। परंतु ऐसे भावाभास की अवस्था में भी, रत्याभास में, अगर शुद्ध भक्तों का संग होता है और व्यक्ति नियमित तौर से ऐसे साधन भजन करते रहता है, तो वो प्रगति कर पाएगा और सच्चे भाव को भी प्राप्त कर पाएगा। तो ये है भगवान के भक्तों का संग। और ये भाव भक्ति को प्राप्त करने की पद्धति, ये पूरी तरह से भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा के ऊपर निर्भर है। और अगर कोई भाव भक्त भी के अंदर कोई दोष दिखाई भी पड़े, और अगर वह वास्तव में भाव में स्थित है, तो उसके दोषों को हमें देखना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से चंद्रमा के ऊपर हमें कोई दाग दिखाई पड़ता है, लेकिन उस दाग से सूर्य चांद की रोशनी कम नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से भाव भक्ति के स्तर में स्थित होने वाला भक्त जो है, उसके अंदर थोड़े दोष हों भी तो वो जल्दी ही मिट जाएंगे, उनको गंभीरता से हमें नहीं लेना चाहिए। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने, रणरूप गोस्वामी ने नरसिंह पुराण का एक श्लोक प्रमाण के तौर से बताया है। तो केवल वो श्लोक बताइएगा, नरसिंह पुराण में क्या कहा है, आखिरी पेज में।
यदि कोई मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है, किंतु यदि वह बाह्य रूप से किसी गर्भित कार्य में संलग्न रहता है, तो यह गर्भित कार्य उसकी दृढ़ भक्ति के प्रभाव से जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कि पूर्ण चंद्रमा में भी कलंक देखा जाता है, फिर भी पूर्ण चंद्रमा द्वारा बिखेरी गई चांदनी को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार प्रचुर भक्ति के बीच रंच मात्र दोष को दोष नहीं गिना जाता। कृष्ण के प्रति अनुरक्ति दिव्य आनंद है। असीम दिव्य आनंद के मध्य किसी भौतिक त्रुटि का एक डिब्बा कोई महत्व नहीं रखता।
तो इस प्रकार से भी भाव भक्ति की चर्चा हुई समाप्त। अब संक्षेप में करेंगे चर्चा प्रेमा भक्ति की, तत्पश्चात छुट्टी। तो अध्याय 19, भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति। अच्छा, ये श्लोक ऊपर जरा करेंगे। हाँ, अच्छा, तो 19वें अध्याय का पहला लाइन पढ़िएगा।
जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है, तो ये शुद्ध प्रेम कहलाती है।
तो आइए पढ़ते हैं रूप गोस्वामी द्वारा दी गई परिभाषा प्रेमा भक्ति के बारे में। संयम श्रेणी, श्री होना चाहिए, श्रेणीता संयम श्रेणीता स्वांतो, ग्रीन में कर लो कोई बात नहीं। संयम श्रेणीत स्वांतो ममत्वा अणानी, व होना चाहिए वो, ममत्वा वह है वह। ममत्वातिशयांकितः इंकित कितः भावस्स एव सांद्रात्मा बुधे प्रेमा निगद्यते। क्या आपने लिख लिया? और यहां भी बुधे ही होना चाहिए है? बुधे ही बु अच्छा, तो अभी जल्दी से प्रेम भक्ति की परिभाषा। तो मुख्य लक्षण या स्वरूप लक्षण सांद्रात्मा, तीसरे लाइन में सांद्रात्मा, सांद्र सांद्र मतलब घना। कहां आपने ये शब्द सुना है पहले? सांद्रानंद विशेष आत्मा भक्ति का लक्षण है। कौन से नंबर का? पांचवा। छठा कौन सा है? श्री कृष्णाकर्षिणी। अच्छा, तो सांद्रात्मा का मतलब है कि प्रेम भाव, प्रेम भक्ति भाव भक्ति का घना स्तर है। जब भाव बहुत घना हो जाता है तो वो प्रेम बन जाता है। भाव भक्ति के परिपक्व अवस्था को प्रेम भक्ति कहते हैं। तो भाव जब बहुत ही घना हो जाता है, सांद्र, और उसका जो सार है वो घनापन है, आत्मा, सांद्र आत्मा, तो प्रेम भक्ति का लक्षण ही है कि वो बहुत घना होता है। तो उस समय बुधई, जो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे अवस्था को प्रेमा भक्ति कहते हैं। निगत्यते मतलब कहा जाता है, क्या कहते हैं? भाव स एव सांद्रात्मा बुधई ही प्रेमा निगद्यते। तो जब भाव की अवस्था और भी तीव्र हो जाती है, भाव घना हो जाता है, तो ऐसे अवस्था को प्रेमा भक्ति कहते हैं। ये स्वरूप लक्षण है, मुख्य लक्षण है। और तटस्थ लक्षण दो हैं। पहले सम्यन मस्रिणिता स्वांतः, स्वांतो स्व अंतः मतलब हृदय, स्व अंतः अंतःकरण, मस्रिणिता मतलब कोमल, सम्यक मतलब पूरी तरह से पूर्णतया। भाव भक्ति की अवस्था में हम देख चुके हैं चित्त मासृण्य है ना, वास्तव में मासृण्य होना चाहिए। हाँ, मासृण्य या तो भाव की अवस्था में हृदय कोमल हो जाता है, परंतु प्रेम भक्ति की अवस्था में वो पूरी तरह से कोमल हो जाता है, पूर्णतया कोमल हो जाता है। और दूसरा विशेष गुण जो तटस्थ लक्षण प्रेम भक्ति का है वो है ममत्व अतिशय अंकितः। दूसरा लाइन ममत्व अतिशय अंकित चार्ट है ना, अब तो लगाइए ना फिर। यही है ऊपर वाला जो है। तो प्रेम भक्ति का स्वरूप लक्षण है सांद्रात्मा, तटस्थ लक्षण एक है सम्यक मश्रिणित स्वांतो, और दूसरा ममत्व अतिशय अंकितः। ममत्व का क्या मतलब है? ममता मतलब क्या? मेरापन, मम ममता, ये मेरा है। साधारण भक्ति में भक्त का भाव होता है तदीय, तदीय मतलब मैं कृष्ण का हूं। परंतु प्रेम भक्ति में क्या होता है? कृष्ण मेरे हैं, इसको ममत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो साधारण भक्ति और प्रेम भक्ति में ये अंतर है। साधारण भक्त क्या सोचता है? मैं कृष्ण का हूं। परंतु प्रेमा भक्ति की अवस्था में भक्त सोचता है कृष्ण मेरे हैं। यह है अंतर तदीय और ममत्व में। तो भक्त जो है भगवान को अपनी संपत्ति समझने लगता है प्राय, और कितना समझता है ऐसे अपने भगवान को अपनी, अतिशय अंकित, अतिशय बहुत ज्यादा। दृढ़ विश्वास है उसको कि भगवान मेरी संपत्ति है। फिर आगे श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस दुनिया में जो प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है वो वास्तव में प्रेम नहीं है, वो काम है। सच्चा प्रेम तो केवल भगवान के संबंध में पाया जाता है और कहीं नहीं। और नारद पंचरात्र की परिभाषा रूप गोस्वामी देते हैं, जिसमें प्रेमा भक्ति या भक्ति की परिभाषा दी गई है कि जिस भाव में भगवान के प्रति एक ममत्व की भावना होती है उसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। और आगे चल के भीष्म देव इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और वो कहते हैं कि केवल इतना नहीं कि हमें सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण मेरे हैं, हम ये भी ठीक से जान लेना चाहिए कि और कुछ मेरा नहीं, केवल कृष्ण मेरे हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण भी है मेरा, पैसा भी मेरा है, कृष्ण भी मेरे हैं, मेरा घर भी मेरा है, गाड़ी भी मेरी है, कृष्ण भी मेरे हैं, ऐसा नहीं। ये केवल कृष्ण अनन्य ममता विष्णु की अनन्य चीज, अन्य जो चीजें हैं वो मेरे नहीं है, केवल कृष्ण मेरे हैं। इस प्रकार से भीष्मदेव, भीष्म क्या कहते हैं पढ़िएगा, भीष्म जैसे महापुरुषों ने बतलाया है,
भीष्म जैसे महापुरुषों ने बतलाया कि भगवत प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथा कथित प्रेम का पूर्ण परित्याग। भीष्म के अनुसार
फिर से पढ़िए,
भीष्म जैसे महापुरुषों ने बतलाया है कि भगवत प्रेम का अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथा कथित प्रेम का पूर्ण परित्याग।
पूर्ण परित्याग मतलब जो कृष्ण नहीं है उनके प्रति प्रेम से पूर्ण परित्याग, केवल कृष्ण। मतलब संसार की चीजें नहीं, यहां वहां नहीं, केवल अपना मन चित्त बिल्कुल कृष्ण में ही रहता है, ये प्रेम भक्ति की अवस्था है। अच्छा आगे बढ़िए।
भीष्म के अनुसार प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सारे आकर्षण ममता को हटाकर किसी एक व्यक्ति पर अपने स्नेह को स्थापित कर देना। ये शुद्ध प्रेम दो अवस्थाओं के अंतर्गत भगवान में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक तो भाव से और दूसरा भगवान की अहेतु की कृपा से।
तो अभी हमने चर्चा की थी ना कि भाव भक्ति कैसे उत्पन्न हो सकता है, आपको याद है थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, भाव भक्ति कैसे उत्पन्न होती है, साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। साधन से या तो कृपा से। तो यही प्रश्न प्रेम भक्ति के साथ किया जा सकता है कि प्रेम भक्ति कैसे जागृत होती है। जैसे भाव भक्ति की जागृति के लिए या तो साधन है या कृपा है, दोनों में से एक चाहिए, दोनों चाहिए। तो प्रेम भक्ति के लिए क्या है? हाँ, तो जरा चार्ट लगाएंगे आप। प्रेम के दो कारण, भाव और कृपा। जैसे भाव के लिए दो कारण थे, साधन और कृपा, क्योंकि भाव के नीचे था साधन। अभी प्रेम के नीचे क्या है? भाव। तो साधन के जगह में क्या आ गया? भाव। हाँ, समझ गए ना आप? भाव उत्थ और प्रसाद उत्थ। प्रसाद मतलब कृपा, उत्थ मतलब से जागृत होने वाला। भाव उत्थ को जोड़ के फिर हो जाता है भावोत्थ, और फिर जब ये भावोत्थो भक्ति कहते हैं, भावोत्थो भाव भक्ति। भाव भक्ति से उत्पन्न होने वाला या भाव भक्ति के कारण, भाव भक्ति करते करते व्यक्ति प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है, ये एक कारण है। और दूसरा कारण है कि भगवान की कृपा से व्यक्ति को प्रेम भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। भाव भक्ति में व्यक्ति अपने सिद्ध स्वरूप को जान लेता है कि मैं कौन हूं भगवान की लीला में। परंतु जब व्यक्ति वही व्यक्ति जब प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है तो वह वास्तव में भगवान की लीलाओं में प्रवेश करता है अपने नित्य स्वरूप में, और उस समय उसका भाव ये होता है कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं, कृष्ण मेरे प्रेमी हैं, जो भी भाव हो उस अनुसार वो भाव रखता है प्रेम भक्ति की अवस्था में। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अगर वो भाव भक्ति करते करते आया है तो वह भावोत्थो प्रेम भक्ति कहते हैं। ठीक है। और अगर वो कृपा के माध्यम से आए हैं, भगवान ने विशेष कृपा कर दी है उनके ऊपर, हालांकि उन्होंने भाव भक्ति को प्राप्त शायद नहीं भी किया होगा, तो उसको प्रसादोत्थो प्रेम भक्ति कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि भाव भक्ति कैसे प्राप्त किया जाता है? हमने आधे घंटे पहले क्या चर्चा किया था? साधन या कृपा। और साधन के दो भाग क्या हैं? वैधि और रागानुग। तो वैधि भक्ति करके भी भाव भक्ति को प्राप्त किया किसने? नारद मुनि ने। और रागानुग भक्ति करके भाव को प्राप्त किया चंद्रकांति, है ना? तो यहां फिर से नाम आता है उनका। तो यहां भी उसी प्रकार से जिन्होंने वैधि भक्ति करके भाव प्राप्त किया और फिर भाव के माध्यम से प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली, तो उनको ये वैध भावोत्थ प्रेम भक्ति कहते हैं। और जिन्होंने रागानुगा भक्ति करके भाव को प्राप्त किया था और आगे चल के फिर प्रेम को प्राप्त किया, तो उनको रागानुगीय भक्ति भाव भक्ति कहते हैं, प्रेम भक्ति कहते हैं। वैध भावोत्थो और रागानुगीय भावोत्थो। प्रेमा भक्ति, जो प्रेमा भक्ति उस भाव भक्ति से उत्पन्न हुई है जो कि वैधि भक्ति से उत्पन्न हुई, उसको वैध भावोत्थो प्रेमा भक्ति कहते हैं। और वो प्रेम भक्ति जो भाव भक्ति से उत्पन्न हुई, जो भाव रागानुग साधन भक्ति से उत्पन्न हुई, उसे रागानुगीय भावोत्थो प्रेमा भक्ति कहते हैं। ठीक है, और आगे अभी यहां जो भाव, ये शीर्षक है ना पहले ही पेज में, तो ये है भावोत्थो। यहां जो लिखा है ना भावोत्थो, भावोत्थो और प्रसादोत्थो, सही। तो पहली बार पहला शीर्षक भाव का है तो वो है भावोत्थो, और पेज घुमाइए पीछे है भगवान की असाधारण कृपा तो वो है प्रसादोत्थो। तो जहां भाव लिखा है उसका मतलब है भावोत्थो, मतलब वो प्रेमा भक्ति जो भाव भक्ति से उत्पन्न हुई, और पीछे जो भगवान की असाधारण कृपा ये शीर्षक है वो है प्रसादोत्थो, जो प्रेमा भक्ति भगवान की कृपा से उत्पन्न हुई। ठीक है,
जो भाव वाली जो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की भक्ति का प्रसादोत्थो,
भावोत्थो और प्रसादोत्थो, भावोत्थो के दो हैं, जो वैधि के ऊपर है, जो रागानुग के ऊपर है। वैधि के ऊपर है वो वैध, जो वैधि से आता है वो वैध, जो रागानुग से आता है वो रागानुगीय। तो वैध भावोत्थो प्रेमा भक्ति, रागानुगीय भावोत्थो प्रेमा भक्ति। ठीक है, तो फिर ये भावोत्थो का उदाहरण, यहां भाव इसमें श्रीमद् भागवत का एक उदाहरण दिया गया है, ये 11वें स्कंद का है, जिसमें भक्त प्रार्थना करते हैं। ये भक्त के बारे में जो प्रेमा भक्ति की अवस्था में है ऐसे भक्त का वर्णन है, वहां पढ़िएगा केवल।
जब कोई निरंतर भाव प्रेम में भगवान के सानिध्य में रहता है तो ये समझना चाहिए कि स्वयं भगवान ने अपने असाधारण हेतु की कृपा से उसे ये पद प्रदान किया है। इस तरह की असाधारण कृपा का उदाहरण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में पाया जाता है, जिसमें कृष्ण उद्धव से बताते हैं कि वृंदावन की गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए ना तो वेद पढ़ा था, ना ही उन्होंने कभी कोई तीर्थाटन किया था, ना ही उन्होंने दृढ़तापूर्वक किसी विधि विधान को किया, ना ही उन्होंने कोई तपस्या की, उन्होंने मेरी संगति मात्र से भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की।
नहीं नहीं कहा
भगवान की ऐसा
नहीं, नहीं ग्यारहवें स्कंद में ऊपर, ये हम भावोत्थो की बात कर रहे हैं ना।
भक्ति के पालन के समय भक्त में स्वाभाविक कृष्ण चेतना विकसित होती है, इस तरह हृदय के कोमल होने से वह उन्मत्त मनुष्य की तरह नाचने गाने लगता है, भगवान नाम कीर्तन करते हुए वह कभी चिल्लाता है, कभी बहकी बहकी बातें करता है, कभी गाता है और कभी किसी बाहर मनुष्य की परवाह न करते हुए पागल मनुष्य की तरह नाचता है।
तो ये कौन सा उदाहरण है, किसका प्रमाण, पूरा शब्द बोलिए। वैध भावोत्थो प्रेमा भक्ति का उदाहरण है। ठीक है, वैध क्यों, वैधी से जो उत्पन्न होता है वो वैध है। अच्छा, फिर आगे जो पद्म पुराण का प्रमाण है वो है रागानुगीय भावोत्थ प्रेम भक्ति। पद्म पुराण में क्या है, चंद्रकांति फिर से पढ़िए।
पद्म पुराण में रागानुग प्रेम से विकसित भाव प्रेम के विषय में एक वक्तव्य पाया जाता है, एक प्रसिद्ध सुमुखी कन्या चंद्रकांति कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त पाने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, वह सदैव भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती थी और उन्हीं का गुणगान करती थी। वह अन्य किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि केवल कृष्ण ही उसके पति होंगे।
कृष्ण की मूर्ति थी चंद्रकांति के पास, तो मूर्ति को मूर्ति नहीं समझती थी, जानती थी कि केवल मूर्ति नहीं है, साक्षात कृष्ण ही हैं। तो वो राघानु का भाव उत्पन्न करके फिर भाव के माध्यम से प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर ली चंद्रकांति ने। तो ये हुआ भावोत्थो प्रेमा भक्ति। अब आए ऐसे प्रेमा भक्ति जो कि केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, प्रसादोत्थो। और प्रसादोत्थो प्रसाद भगवान की कृपा किस रूप में आती है? विशेष करके उस रूप से जबकि वो अपना सानिध्य, अपना संग किसी भक्त को देते हैं और ऐसे कोई विशेष कार्यों से वो कृपा प्रदान करते हैं। उदाहरण यहां प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही उद्धव से कह रहे हैं कि वृंदावन के गोपियों ने न कभी वेदों को पढ़ा था, न कभी तीर्थ स्थानों में वो भ्रमण करने गए थे, न उन्होंने कोई धार्मिक क्रियाओं को किया था, न तपस्या की थी, केवल मेरे संग से उनको सबसे ऊंची प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई। तो ये एक उदाहरण है प्रसादोत्थो प्रेमा भक्ति का। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रसादोत्थो प्रेमा भक्ति में भी दो प्रकार हैं, और वो है एक प्रकार का प्रेम जिसमें भक्त भगवान के महात्म्य को, उनके महानता को जानता है, और दूसरा जिसमें वो नहीं जानता। वृंदावन में भक्त जानते हैं कि नहीं जानते? जानते अगर हैं भी, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, उनके भाव में ये प्रभाव नहीं करता। तो इसको महात्म ज्ञानम प्रसादोत्थो प्रेमा भक्ति कहते हैं, और दूसरा है केवला, केवला प्रसादोत्थो प्रेमा भक्ति। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो चाहे चंद्रकांति की तरह या वृंदावन की गोपियों की तरह जो सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहेंगे, सदैव उनका गुणगान करते रहेंगे, वो अवश्य कृष्ण भक्ति के, कृष्ण प्रेम के सर्वोच्च सीमा को प्राप्त करेंगे भगवान की असाधारण कृपा से, उनकी हेतु की कृपा के कारण। तो नारद पंचरात्र का उदाहरण देते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो लोग, जो भक्त वैधि भक्ति करते हैं, और उनको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो वो महात्म ज्ञान प्रसादोत्थो प्रेमा भक्ति को प्राप्त करते हैं, उनको भगवान का ज्ञान युक्त प्रेम प्राप्त होता है। और ऐसे महात्म ज्ञान युक्त भक्त जो है, उसे सारष्टि आदि चार प्रकार के वैष्णव मुक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ये महात्म्य ज्ञान का उदाहरण है नारद पंचरात्र में जो दिया हुआ है। आगे नारद पंचरात्र का ही दूसरा उदाहरण देते हैं केवला भक्ति के लिए। हाँ, तो केवला भक्ति के बारे में पढ़िए दूसरा जो प्रमाण है नारद पंचरात्र का।
नारद पंचरात्र में शुद्ध अनन्य भक्ति को स्वार्थ भावना से भी दूर बतलाया गया है। यदि भक्त भगवान कृष्ण से निरंतर प्रेम करता है और उसका मन सदा उन्हीं पर स्थिर रहता है, तो एकमात्र यही भक्तिमय प्रवृत्ति भगवान के ध्यान को आकर्षित करने वाली सिद्ध होगी। दूसरे शब्दों में, जो वैष्णव निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है वही शुद्ध वैष्णव।
तो ये केवला भक्ति का वर्णन है। ठीक है। तो जो वैधी भक्ति प्राप्त करता है और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो फिर वो महात्म ज्ञान प्रसादोत्थो प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है। जो रागानुगा भक्ति करके भगवान की कृपा को प्राप्त करता है वो केवला भक्ति को प्राप्त करता है। केवला प्रसादोत्थो प्रेमा भक्ति, ठीक है। इसके लिए भी एक चार्ट बनाया है शायद हमने ना, ये है देखिए। कृपा ये तो एक साधारण शब्द है, मतलब हमारे दैनिक भाषा में हम बोल रहे हैं कृपा। टेक्निकल शब्द तो है प्रसाद, कृपा प्रसाद है, प्रसाद का मतलब है कृपा, ताकि सब भक्त लोग समझें इसलिए हमने कृपा लिखा है। परंतु शब्द है वास्तव में प्रसादोत्थो। तो अभी जो बात हमने कही थी कि वैध भाव या वो भाव भक्ति जो कि वैधी भक्ति से उत्पन्न हुआ है, और ऐसे भाव भक्ति करते करते अगर भगवत कृपा हो जाए तो महात्म ज्ञान प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाता है, और रागानुगीय भाव भक्ति करते हुए भगवत कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो केवल प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाता है। और अंत में ये जरा लगाएंगे ऊपर, अभी आखिरी पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, जिसमें सारी श्रृंखला देते हैं रूप गोस्वामी कि कैसे शुरुआत से लेकर प्रेमा भक्ति की अवस्था में कितने स्तर होते हैं। इस श्लोक के थोड़े थोड़े भाग तो आपने सुने होंगे, आदो श्रद्धा तथा साधो संग, आपने सुना है, आदो श्रद्धा ततः साधु संगो थ भजन क्रिया तथो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानाम अयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। पेन मुझे दीजिए ना। अच्छा, आप लिखते जाइए, ये श्लोक महत्वपूर्ण है। ये आगे चल के इस श्लोक में जो ज्ञान दिया हुआ ये बहुत काम में आएगा। लिख लिया आपने? तो ये क्रमशः भक्ति, भक्त कैसे प्रगति करता है प्रेमा भक्ति की ओर, इसका वर्णन रूप गोस्वामी यहां दे रहे हैं। आदो, आदो मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में। श्रद्धा, श्रद्धा ये बहुत कोमल श्रद्धा है। अगर कोई भक्त थोड़ा भी कुछ प्रशंसा करता है, अरे ये लोग बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं, अरे इन लोग बहुत मधुर कीर्तन करते हैं, ये हरे कृष्ण वाले अच्छे काम करते हैं, अच्छा कुछ कर रहे हैं, बस इतना कह रहे काफी, आदो श्रद्धा हो गया। या कहीं वो जा रहे हैं, वो कुछ इच्छा होती, चलो जाके देखते हैं, चलो इनकी भक्तों के बीच में जाके बैठ तो जाते हैं, आदो श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा से, कोमल श्रद्धा से भक्तों का संग करने की इच्छा होती है। साधु संगह, तो पहला क्या है? श्रद्धा। दूसरा साधु संग। तो साधु संग में जाते हैं तो क्या करते हैं? भजन क्रिया, श्रवण कीर्तन, तरह तरह की सेवाएं होती हैं, तो भजन क्रिया। और भजन क्रिया करते करते क्या परिवर्तन होने लगता है भक्त के हृदय में? अनर्थों का निवारण होते रहता है धीरे 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 से, और जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होती रहती है वैसे वैसे क्या बढ़ता है? निष्ठा बढ़ती रहता है। तो निष्ठा, और निष्ठा बढ़ते 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 क्या होता है, रुचि उत्पन्न होती है किस चीज में, भगवान नाम में, भगवान की लीलाओं में, भक्ति में, भक्ति के कार्यों में रुचि उत्पन्न होती है, और रुचि से आगे आसक्ति भगवान के प्रति बहुत बढ़ जाती है, सुदृढ़ हो जाती है, तीव्र हो जाती है, और इस आसक्ति के बाद फिर भाव की अवस्था को व्यक्ति प्राप्त करता है। तो आसक्ति की अवस्था तक ये साधन भक्ति है। तो हमें साधन भक्ति कब तक करना चाहिए? साधन भक्तों के अंगों को हमें निरंतर करना चाहिए। जब वो भाव को पहुंचते हैं ना, भाव को व्यक्ति पहुंच जाता है, तो यही अंग जो है ना उनको अनुभाव कहते हैं। वही जो अंग हैं जो पहले साधन भक्ति में किए जाते थे, अब भाव अवस्था को प्राप्त करने के बाद जब किए जाते हैं तो उनको अनुभाव कहते हैं। तो ये लिखिएगा आप कि पहले सात साधन भक्ति के स्तर में है और आठ और नौ भाव और प्रेम है। हमें सब पूछ लेना चाहिए कि हम कहां पे हैं, हम कहां पे हैं। तो हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, कौन सा नंबर? नौ नंबर। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये प्रेम भक्ति बहुत ही दुर्लभ है, अतीव जो भाग्यशाली लोग होते हैं वही मात्र प्राप्त करते हैं, और ऐसे महान महान भक्तों को समझना बहुत मुश्किल होता है। नारद पंचरात्र में शिव जी पार्वती देवी से क्या कहते हैं, पढ़िएगा। भौतिक दुख या सुख की अनुभूति नहीं कर पाता, इसलिए देखिए ऐसे प्रेमी भक्तों को समझना बहुत मुश्किल है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। ऐसे प्रेमी भक्तों को समझना मुमकिन नहीं है। दूसरों की बात तो दूर है, खुद वही वैष्णव अपने आप को नहीं समझ पाता है। यहां वही बताया गया है, वो भी खुद समझ नहीं पाते हैं कि आध्यात्मिक भाव किस प्रकार से उतर चढ़ रहे हैं उनके चित्त के भीतर, क्योंकि वो पूरी तरह से स्वरूप शक्ति के आश्रित हैं, और स्वरूप शक्ति लादिनी शक्ति काम करा रही है, भाव करा रही है, इसलिए वो भक्त भी अपने अंदर क्या हो रहा है वो समझ नहीं पाता, तो दूसरे क्या समझेंगे। इसलिए ऐसे प्रेमी भक्तों को समझना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और अन्य गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए फिर यहाँ इस अध्याय को समाप्त करते हैं। इसके साथ जो है पहले 19 अध्याय समाप्त हुए, और ये है पूर्व विभाग भक्ति रसामृत सिंधु का, और आपके भक्ति शास्त्र के लिए भक्ति रसामृत सिंधु में इतना ही बतलाया गया है। तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी रहे सब, लेकिन हम कहीं भी टाइम में नहीं आ पाए एक भी दिन। हालांकि फिर भी आप बड़े धीरज रख के आप बैठे रहे, कभी एक घंटा लेट भी होता था। तो आशा करते हैं कि आप भक्ति रसामृत सिंधु को अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको, केवल परीक्षा की दृष्टि से हमने ये नहीं कहा, क्लास इस प्रकार से नहीं दिए हैं, इस दृष्टि से हमने ऐसे डिटेल में आपको बतलाया है ताकि आगे चल के भी आप इसको बार बार पढ़ते रहें और इसका रस लेते रहें। अभी परीक्षा कब है भक्ति रसामृत सिंधु की? 5-6 नहीं, 6 को होने वाली थी ना। अच्छा आज क्या है? 2, तो ज्यादा समय नहीं है, तो आने वाले 2-3 दिन में। अब लेकिन पहले क्या आपने पढ़ा होगा ना कुछ भक्ति रसामृत सिंधु का? पहले से शुरू किया होगा ना? आप में से कितने भक्तों ने 19 अध्याय पढ़ लिए हैं? नहीं, कोई बात नहीं, जितना हो सके आप पढ़िएगा। तो नंबर आए अच्छे तो आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास अवश्य कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब वापस आप अपने अपने घरों में अपने अपने केंद्रों में जाएंगे तो अवश्य इसको पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है ये, इतना कुछ इसमें अमृत भरा हुआ है, इसलिए तो रूप गोस्वामी ने नाम ही ऐसे दिया है, भक्ति रसामृत सिंधु, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।